अध्याय 9 बुलाहट, सोए हुओं को जगाना। बुलावे का आदेश पत्र। सुसमाचार प्रचार फैलाने की खबर की कलीसियाओं में घंटनाद कर सुनाना चाहिए, ताकि संसार भर में लोग काम करने के लिए जागृत हो जाएं। कलीसिया के लोगों में विश्वास इतना मजबूत हो जाए तथा अनदेखी स्वर्गीय ताकतों से जोश प्राप्त कर, कभी न खत्म होने वाला स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर उस महान कार्य को कर सकें जो उन्हें दिया गया है, तथा जिस काम को वे अपने परमेश्वर की अगुवाई में पूरा कर सकें, जो अपने आप को परमेश्वर की अगुवाई में चलने को समर्पित कर देते हैं, उन्हें परमेश्वर अपने काम के लिए अभिषिक्त कर आने वाली घटनाओं से परिचित करवा देता है, जो उसकी आत्मा से प्रेरित होते, जिसने अपनी जान जगत के लिए दे दी। वे लोग यूं ही बिना किसी मकसद के खड़े नहीं रहेंगे, ये बताते हुए कि वे निकल पड़ेंगे उस युद्ध को लड़ने के लिए, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए निडर होकर लड़ेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा।
उठ खड़े हो, युद्ध की ललकार है। सत्य और गलत के बीच संघर्ष का अंतिम परिणाम नजदीक है। स्वर्ग के राजकुमार इम्मानुएल के खून से रंगे झंडे के नीचे सच्चाई की लड़ाई लड़ो और अनंत महिमा प्राप्त करो, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी और हम विजयी होने से भी ज्यादा होंगे उसके द्वारा जिसने हमसे ज्यादा प्रेम रखा है। अब पाप क्षमा की अवधि समाप्त होने को है। आइए अनंत जीवन पाने के लिए जो काम करना है उसे करने में देरी न करें, अपने परमेश्वर की महिमा करें और आत्माएं जीतने का माध्यम बने, वो आत्माएं जिनके लिए यीशु ने अपनी जान दी। युद्ध के लिए निकल पड़ने के आदेश। एक बार वेलिंगटन के शासक एक मसीही समाज की सभा में उपस्थित थे, जहां वे अन्य जाति के लोगों में सुसमाचार प्रचार के काम की सफलता की संभावना के बारे में बहस कर रहे थे। उन्होंने शासक से अपील की कि वे बताएं उनके अनुसार इस प्रकार के प्रयास अधिकतर किस हद तक सफल होते हैं। उस बूढ़े सैनिक ने कहा, सज्जनों, तुम्हारे आदेश क्या है? सफलता के बारे में बहस करना जरूरी नहीं है। यदि मैं तुम्हारे आदेशों को पढ़कर सुनाऊं तो वे इस प्रकार हैं। जाओ, जगत के छोर तक सुसमाचार का प्रचार हर एक जाति धर्म को करो। सज्जनों, जाओ, आदेश का पालन करो। देरी करने का समय नहीं, प्रभु का दिन नजदीक है। वह नजदीक है और जल्दी आता है। सपन्या 1:14। आओ, हम सुसमाचार के जूते पहनकर तैयार रहें, एक ही ललकार के साथ निकल पड़ने के लिए। कलीसिया के लोगों को हर समय तैयार रहना है कि प्रभु की आज्ञा सुनते ही तुरंत पालन करने के लिए झटपट निकल पड़ें। जहां भी दिखे कि काम पूरा नहीं हुआ है उसे पूरा करें, प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहें। यदि कलीसिया का हरेक सदस्य एक जीवित गवाह बन जाए तो प्रभु का सुसमाचार बड़ी तीव्रता से दुनिया के राष्ट्रों, लोगों, जातियों और भाषाओं तक पहुंचाया जा सकता है। हम इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं और हमारे सामने एक बड़ा काम है, वो अंतिम समय का काम जो सारे संसार को अंतिम संदेश, एक चेतावनी है इस पाप से पूर्ण संसार के लिए। कुछ लोग होंगे जो खेत से, दाख की बारी से तथा अन्य कई ऐसे काम करने की शाखाओं से लाए जाएंगे, ताकि वे परमेश्वर का संदेश पूरे जगत में फैला सकें। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक ये खतरे की घंटी बजा दो। लोगों से कह दो कि प्रभु के न्याय का दिन निकट है, बल्कि जल्दी ही आने वाला है। कोई भी इस चेतावनी से अनजान न हो। शायद हम उन लोगों के बीच हो सकते हैं जो बेचारे पाप में पड़े हैं। हो सकता है हम उन अत्याचारियों के बीच में हों जो अपराध पर अपराध करते जाते हैं। अन्य लोगों से अलग हमें सच्चाई मिल गई है, अतः दूसरों को सच्चाई बताना हमारा उनके प्रति ऋणमुक्त होना है।
मेरे भाइयों और बहनों, अब समय नहीं है कि तुम अपने समय व ताकत का इस्तेमाल स्वयं की सेवा करने में लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम दिनों में तुम उस स्वर्गीय खजाने से वंचित हो जाओ। आगे बढ़ो और क्रूस की लड़ाई जीत लो। आत्माओं को अंधकार से बाहर निकालो। अपने साथियों की भलाई के लिए, उनके उद्धार के लिए परिश्रम करो, और तुम्हारा यही काम तुम्हें उस आग से बचाएगा
जो न्यायी परमेश्वर आकाश से गिराने वाला है। हमें संदेश जल्द से जल्द सुनाना है, एक एक बिंदु, एक एक सलाह उन्हें देना है, ताकि मनुष्य शीघ्र निर्णय कर सकें। साथ ही हम उन्हें सच्चाई को पूर्ण रूप से समझने का समय दें, ताकि वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सही राह ले सकें। प्रभु अपने लोगों को इस काम के लिए बुलाता है। काम करें, ईमानदारी से काम करें, बुद्धि से काम करें, कहीं समय सीमा समाप्त न हो जाए, अनुग्रह का द्वार बंद न हो जाए।
हमारे पास समय नहीं है कि व्यर्थ गंवाएं, अंत करीब है। अभी जो जगह बाकी है कि सत्य का संदेश पहुंचाया जा सके, क्योंकि जल्दी ही दाएं और बाएं ओर से खतरों की दीवारें बनना शुरू हो जाएंगी और फिर कोई काम नहीं हो सकेगा। प्रचार के रास्ते में हर तरह से रुकावटें खड़ी हो जाएंगी और वे प्रचार कार्य नहीं कर सकेंगे जो अभी कर सकते हैं। हम इस काम की सत्यता को जानें, इसका महत्व जानें और जितना अधिक हो सके उतनी उग्रता व तेजी से कार्य करें। प्रभु की ओर से जो दर्शन मुझे मिला है, उसमें मैंने जाना है कि अंधकार की शक्तियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लोगों को जो अभी भी नींद में सो रहे हैं, उन्हें चोरी से बहकाकर धोखे से अपनी ओर कर रहा है। जैसे भेड़िया चुपचाप से अपने शिकार पर काबू पा लेता है, अभी हमारे पास वह चेतावनी है जो हम लोगों को जो नींद में गाफिल सोते हैं उन्हें सुसमाचार की रोशनी से चमका दें, उन्हें जगा दें, वरना जल्दी ही ऐसा करना हमारे लिए कठिन होने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी रोशनी में बने रहें, अपनी आंखें प्रभु यीशु पर लगाए रखें, जो हमारा अगुवा है, तथा धीरज धरकर लगातार प्रयास करते रहकर जीत की ओर बढ़ते जाएं।
देरी करने में खतरा है। जिस आत्मा को तुमने वचन सुनाकर पा लिया है, जिसे सच्चाई के वचन से मसा कर दिया है, संभव है कि वह आत्मा विलंब के कारण तुम्हारे हाथों से छूटकर शैतान के हाथों में चली जाए। शैतान ने पहले से ही अपना जाल बिछाया हुआ है कि वह उन आत्माओं को फंसा ले और प्रभु के लिए जीती हुई आत्माओं को अपने कब्जे में कर ले। तो फिर एक भी दिन की देरी क्यों करें? क्यों ना ये काम आज और अभी ही कर लें? हर उम्र के चेलों में प्रभु के काम के प्रति जागरूकता और कर्तव्य परायणता की अत्यंत आवश्यकता है। किंतु अब तो हम संसार के अंत के बिल्कुल किनारे पर आ खड़े हुए हैं, सत्य को पकड़े हुए, एक ऐसी अद्भुत रोशनी लिए हुए जो जगत के अंधकार को दूर कर देगी। अतः अब इस काम को करने के लिए दुगने साहस व जोश से काम करना है। प्रत्येक को प्राप्त गुणों का इस्तेमाल पूरी रीति से किया जाए। मेरे प्रिय भाई, यदि अभी आपने काम नहीं किया तो आपका अपना उद्धार भी आप खो देंगे। प्रभु आपसे पूछेगा, और यदि तुम अपने काम में असफल हुए जो तुम्हें सौंपा गया था, तो तुम्हारा क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे सामने अनंत जीवन है, पर्दा उठने को ही है। हम अभी भी क्या सोच रहे हैं? क्या अभी भी हम आराम पसंद जीवन में पड़े हैं, जबकि हमारे चारों ओर आत्माएं नाश होने जा रही हैं? क्या हमारे हृदय पूरी तरह से कठोर व ठंडे पड़ गए हैं? क्या हम नहीं देखते और नहीं समझते हैं कि हमें दूसरों के लिए परिश्रम करने की जरूरत है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप उनमें से तो नहीं जो आंखें होते हुए देखते नहीं और कान होते हुए भी सुनते नहीं?
क्या ये व्यर्थ ही है कि प्रभु ने तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान करा दिया है? क्या उसका बार बार चेतौनियों को देना व्यर्थ है कि अंत निकट है? क्या आप विश्वास करते हैं कि उसके अनुसार संसार के लिए की गई घोषणा की क्या होने वाला है इस संसार का? क्या आप विश्वास करते हैं कि पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर का न्याय बाकी है? तो फिर आप बेफिक्र कैसे आराम से बैठ सकते हैं?
सोए हुओं को जगाना। प्रभु का काम जल्दी ही खत्म होने वाला है और हर तरफ दुष्टता बढ़ती जा रही है। हमारा काम करने का थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। अब हमें आत्मिक जागशत लाना है और अपना सब कुछ प्रभु की सेवा में दे देना है। उसका आत्मा हर सच्चे सेवक के साथ मिलकर काम करेगा और अपनी सामर्थ्य से भर देगा। उठो भाइयों और बहनों, जाग जाओ, नींद की गफलत में ना रहो। यहां दिन भर व्यर्थ क्यों खड़े रहते हो? प्रभु यीशु बुलाता और कहता है, जाओ और मेरी दाख की बारी में काम करो। जिस किसी ने भी पवित्र आत्मा पाया है उसे वो काम में लाएगा और पवित्र आत्मा उसके साथ मिलकर वो सारे काम भरपूरी से अंजाम देगा। वे जिन्होंने प्रभु यीशु को वास्तव में विश्वास से ग्रहण किया है वो काम करेगा। उन्हें अपने ऊपर आत्माओं को जीतने का बोझ महसूस होता है। प्रभु इन सभी को बुलाता है जिन्हें सच्चाई का ज्ञान है, जिनके पास सच्चाई का भंडार है। वे उठ खड़े होंगे और स्वर्गीय ज्योति को दूसरों तक पहुंचाएंगे। जागो भाइयों, स्वयं की आत्मा को बचाने के खातिर जागो। यीशु मसीह के अनुग्रह के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। काम करो जब तुम कर सकते हो।
यदि हम अपनी आंखों से ये देख सकते हैं कि स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूत उन लोगों को बहकाने में लगे हैं जो अभी तक सो रहे हैं और समझते हैं सब कुछ ठीक है और वे सुरक्षित हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि दुष्ट स्वर्गदूत हमारी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। वे ऐसे ही मौके की खोज में रहते हैं। प्रभु सबको बुलाता है, चाहे वह प्रचारक हो या लोग। वह सबको जगाता है। पूरा स्वर्ग उत्तेजना से भरा है। पृथ्वी के इतिहास का अंत करीब है। हम सब अंतिम दिनों की हानियों के भय से भयभीत हैं। और ज्यादा भयानक दिन आने वाले हैं और हम अभी तक जागे नहीं, सचेत नहीं हुए। इस प्रकार की निष्क्रियता और वफादारी की कमी प्रभु के काम के रास्ते में खतरनाक है और ये गफलत की नींद शैतान की ओर से है। मैं परमेश्वर के उन शेष लोगों के लिए क्या कहूं? मुझे वह भयानक दृश्य दिखाया गया जिसमें शैतान और उसके दूत परमेश्वर के लोगों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे पता है कि यदि ये लोग अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं तो ये पक्का है कि वे उसके काबू में हैं, क्योंकि उनका विनाश अवश्य है।
दुनिया के अंत के दिनों में मनुष्यों के पुत्रों के लिए कुछ ही समय शेष है और फिर जल्दी ही हरेक आत्मा का न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। अतः स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर कलीसिया के लोगों को अंतिम बार काम करने के लिए जागृत करता है, क्योंकि फिर बाद में उन्हें कुछ नहीं करना होगा। सबका निर्णय सुनाया जा चुका होगा। वे जिन्हें प्रभु यीशु के द्वारा सत्य का ज्ञान हो गया और सत्य ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया है, केवल वे ही चुने हुए प्रभु के लोग होंगे जो पृथ्वी पर से अलग किए जाएंगे, और वो उनकी गिनती कर रहा है जो उसकी महिमा का गीत गाने को आगे आएंगे, जिन्हें उसने मृत्यु के अंधकार से जीवन की ज्योति में बुलाया है। वे सभी आशीषें जो उन्हें मिली हैं वो दूसरों तक पहुंचाना है। वो उद्धार का सुसमाचार जो हरेक राष्ट्र, कुल, भाषा एवं लोगों के लिए है। 100 में से एक भी नहीं है हम में से जो सांसारिक और सामान्य जीवन शैली के कामों में अपने आप को लगाए हुए हैं। हम अभी तक आधे भी नहीं जागे हैं उन आत्माओं को बचाने के लिए जिनके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। यदि प्रभु के सेवकों में वफादारी से सक्रिय होकर अपना काम किया हुआ होता तो आज जहां केवल एक आत्मा बचाई गई है वहां हजारों आत्माओं को बचा लिया गया होता, जो खुद भी अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार कर रहे होते। और वे सब भी जो व्यक्तिगत रूप से इस काम में नहीं लगे हैं, वे कम से कम अपनी सहानुभूति, प्रार्थनाएं तथा अन्य साधन जुटाकर इस कार्य में शामिल हो सकते हैं। मसीही देशों में तो कई एक वफादार सेवक आत्माओं को बचाने में लगे होते।
हजारों लोग जो इस महान प्रभु की ज्योति और बेशकीमती अवसरों का आनंद लेते हैं, किंतु फिर भी अपने धन एवं अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए नहीं करते। यहां तक अपनी खुद की आत्मा को प्रभु के प्रेम में बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते कि वे कलीसिया पर बोझ ना बन जाए। ऐसे लोग वास्तव में स्वयं बोझ हैं और स्वर्ग के लिए रुकावट हैं। प्रभु की खातिर, सच्चाई की खातिर और तो और अपने स्वयं के खातिर उन्हें उठकर कुछ ऐसा कर दिखाना है जो हमेशा तक रहे। परमेश्वर की कलीसिया की तुलना एक युद्ध के लिए तैयार सेना से की जा सकती है, जिसमें हर एक सिपाही का जीवन परिश्रम, मुश्किलों और खतरों से भरा होता है। हर कदम पर शत्रु सेना का पहरा होता है। जो अंधकार की ताकतों का राजकुमार है वो उनकी अगुवाई करता है, जो कभी नहीं ऊंधता और अपने काम करने से कभी हटता नहीं। जब भी एक मसीही चिंता मुक्त होकर निश्चित हो जाता है
तभी वो शक्तिशाली शत्रु अचानक हिंसक हो उठता और हमला कर देता है। यदि कलीसिया के सदस्य सक्रिय एवं चौकन्ने नहीं होंगे तो अवश्य ही शैतान के हाथों में पड़ जाएंगे।
क्या होगा यदि किसी सेना के आधे जवान सुख व आलसी हो जाएं या काम के समय सोते रहें? निश्चय ही वे हार, कैद और मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। क्या वे शत्रु के हाथों से बच निकलेंगे? क्या वे किसी इनाम के योग्य ठहराए जाएंगे? नहीं, उन्हें तो तुरंत मौत की सजा सुना दी जाएगी। और क्या परमेश्वर की कलीसिया लापरवाह और विश्वास योग्य नहीं रही? क्योंकि आगे बहुत से महत्वपूर्ण परिणाम इससे जुड़े हुए हैं। मसीही सिपाहियों की सोने वाली सेना, इससे भयंकर बात और क्या हो सकती है? संसार के लोगों को आगे कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि वे तो शैतान और उसकी अंधकार की शक्तियों के हाथ में पड़ चुका है। वे जो इस युद्ध के दिन में पिछड़ जाएंगे, जैसे उन्हें इन बातों में कोई रुचि ही नहीं, ना ही उन्हें कोई जिम्मेदारी थी इस युद्ध के होने की, ऐसे लोगों के तुरंत इसी समय अपने सब कामों को छोड़ देना चाहिए। कार्यवाही अवश्य होना चाहिए। मुझे दर्शन में दिखाया गया कि परमेश्वर के लोग प्रतीक्षारत हैं। कोई परिवर्तन होने के लिए किसी जबरदस्त ताकत ने उसे रोक रखा है, लेकिन वे निराश होंगे क्योंकि वे गलत हैं। उन्हें स्वयं काम करना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु उन्हें काम करने के लिए सच्चा ज्ञान प्रदान करें। जो दृश्य हमारे सामने से गुजर रहे हैं वे काफी हैं सब लोगों को जागृत व उत्तेजित करने के लिए, ताकि सच्चाई हर घर, हर हृदय तक पहुंचे जो सुनने के लिए तैयार हैं। पश्तवी पर की फसल पकने पर है।
ब्रह्मांड की हर एक वस्तु उन लोगों का आह्वान करती है जिन्हें सत्य की पहचान है और जो बिना किसी डर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए समर्पित हैं, जैसा कि उन्हें तीन स्वरदूतों के संदेश में बताया गया है कि जो सुनते और देखते हैं वे अपना काम करें। शैतान की शक्तिशाली सेना हर मसीही को अपने स्थान पर प्रभु के लिए खड़े होने को ललकारती है। यीशु मसीह के जल्दी आने का समाचार जगत के सभी देशों को सुनाना है। सतर्क एवं परिश्रम करने वाले लोगों की जरूरत है जो शत्रु सेना की ताकत को हरा दें। हमारा काम सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठना, बैठकर अपनी असफलता पर रोना और हाथ मलते नहीं रह जाना है, बल्कि समय को देखते हुए प्रचार कार्य करना और परमेश्वर की महिमा हमेशा के लिए करना है। करो, कुछ तो करो, लगा दो अपनी सारी ताकत, इससे पहले कि दूतों की सेना छोड़ न दे साथ। क्योंकि परमेश्वर भी कब तक थामेगा नकारों का था? कोई ये न सोचे कि उसे हाथ बांधकर खड़े रहने और कुछ नहीं करने की छूट है, और कोई भी व्यक्ति उसकी निष्क्रियता और आलस के होते बचाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। जरा सोचो, प्रभु यीशु ने पश्तवी पर रहकर अपनी सेवकाई के काम को कैसे पूरा किया। वह कितना परिश्रमी काम के प्रति वफादार था, लगातार काम में व्यस्त। उसने कभी अपने आप को काम करने से अलग नहीं किया, रोका नहीं। क्या आप और हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं?
स्वर्गीय और मानवीय माध्यमों के मिले जुले प्रयास से आत्माएं बचाई जाती है। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, अब मसीहियों को काम आगे बढ़ाना है। परमेश्वर बुलाता है और चाहता है कि उसके लोग उसकी सच्चाई की रोशनी को हर देश तक पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। कौन है जो प्रभु यीशु के साथ इस काम में सहयोगी हिस्सेदार बनना चाहता है? एक कलीसिया को प्रचार कार्य करने वाली कलीसिया होना चाहिए, तभी वो एक जीवित कलीसिया हो सकता है। उसे केवल अपने ही लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए, पर उन पाप व बुराई से भरी ताकतें जो हमारे विरुद्ध हैं, उन्हें हमारी ओर आने से रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसे प्रभु यीशु का जुआ उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहिए और रास्ते में आने वाले नए विश्वासियों को अपने साथ मिलाते हुए बढ़ते जाना चाहिए। हमारे पास इस युद्ध में लड़ने का कुछ समय ही शेष है, क्योंकि फिर यीशु आ जाएगा और इन विद्रोहियों का दृश्य खत्म हो जाएगा। तब हमारा अंतिम काम होगा प्रभु यीशु के साथ मिलकर उसके अनंत राज्य के पूर्व उसकी आमद के लिए लोगों को तैयार करेंगे। कुछ लोग जो इस युद्ध में सबसे आगे हैं, जोशीले तरीके से शैतान की बुरी बातों को आने से रोकते,
और अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं। अन्य लोग केवल देखते रहने और उनके बलिदान होने पर केवल खेद प्रकट करते हैं, लेकिन उठकर काम करना नहीं चाहते। वे सब अपना गर्व करना छोड़ दें, इस मृत्यु को प्राप्त लोगों के हाथों से मसीह का झंडा उठाकर एक नए जोश के साथ, नई ताकत के साथ सच्चाई को फैलाऊं और प्रभु यीशु की महिमा करो, जैसे पहले कभी न की हो। पाप के विरुद्ध उसे रोकने के काम करो, अंधकार की शक्ति के विरुद्ध खड़े हो। समय की मांग है कि पूरे जोश व ताकत से उन्हें जो वर्तमान में सत्य को जानते व मानते हैं ये निर्णायक काम करें, उन्हें सच्चाई का प्रचार सलाह देकर तथा साथ ही उदाहरण दे देकर करना चाहिए। प्रभु यीशु सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों को, जो चाहे किसी भी मोहल्ले या बस्ती में रहते हैं, उन्हें अपने विश्वास पर पूर्ण रूप से ध्यान देने और अन्य लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए पूरे पूरे प्रयास करने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उन्हें इस काम में सहयोग कर इसे पूरा करना अवश्य है।
आलस्य और धार्मिकता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ना ही हम मसीहियों के जीवन की बड़ी कमजोरियों को या हमारी निष्क्रियता के अनुभवों को प्रभु के कार्य में रुकावट डालने वाले कारण नहीं बना सकते। हमारे शरीर की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ जाएंगी यदि उन्हें भी व्यायाम करके सक्रिय नहीं किया गया, यदि हमारी आध्यात्मिक स्वभाव के साथ भी होता है। यदि धार्मिक होने के साथ धार्मिक के कार्य नहीं किए गए तो क्या फायदा? यदि आप शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहना होगा, क्रियाशील बने रहना होगा। हमें मेहनती कार्यकर्ता होना है, एक बेकार व्यक्ति बड़ा अभागा है। किंतु भी मसीह के महान बलिदान को कोई अनदेखा कैसे कर सकता है? उसने अपनी जान देकर हमें केवल प्रचार करने को कहा है, क्या फिर भी हम केवल आलसी होने के बहाने बनाते रहेंगे? हमारे धार्मिकता के काम यदि बंद हो जाते हैं, एक जाते हैं और कार्य रूप में काम में नहीं लाए जाते हैं, तो अवश्य है कि ये शैतान ही की चाल है जिसमें हम फंस चुके हैं, और अवश्य है कि उसके साथ नाश भी हो जाएंगे। इस समय स्वर्ग की सारी सेना लोगों को प्रभु के दिन के लिए तैयार करने में लगी है, और हम सब भी उनके साथ मजदूर हैं, उसके सेवक हैं, क्योंकि हर एक वस्तु का अंत निकट है। यदि अवसर है काम करने का तो वो आज है, अभी है। दिल से पूरे मन से काम करने वालों की जरूरत है। संकोच करने वाले प्रयास अच्छे परिणाम नहीं देंगे। हमें मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, हमें ईमानदारी की गहराई में जाकर काम करना है।
हम में से कितने ऐसे हैं जो यदि बैठकर ये सोचने लगें कि उनकी ये कुछ न करने वाली स्थिति क्या उनके और अधिक पापी होने का नहीं दर्शाती? कि प्रभु के लिए तोड़ों को इन लोगों ने नकारा है, उनका अपमान किया है। संसार में हमारी स्थिति क्या है? हम सब इस समय प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये समय हमें यूं ही खाली बैठे हुए नहीं गंवाना है। प्रतीक्षा के साथ अन्य लोगों को बचाने का प्रयास करने के साथ उनके कामों पर ध्यान रखना जरूरी है। हमारा जीवन सांसारिक जीवन यापन और सांसारिक वस्तुओं पर नहीं लगा हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ध्यान हमारी स्वयं की पवित्रता और परमेश्वर की सेवा से हट जाए, हम वो न करें जो परमेश्वर चाहता है। जबकि हमें इस काम में आलसी होने की नहीं, बल्कि पूरी आत्मा से प्रभु की सेवा में लगना है। आत्मा का दीपक बुझना नहीं, बल्कि जलते रहना है। अनुग्रह के तेल के साथ इस दीपक को जलाए रखना है। हर तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि आत्मा कमजोर न पड़े, कहीं प्रभु का दिन हम पर चोरों की नाई ना आ पड़े। हम जिस समय में रह रहे हैं वहां आत्मिक आलस्य का कोई स्थान नहीं है। हर एक आत्मा को स्वर्गीय शक्ति के पावर से पूर्ण रहना है। वो सारे काम कर डालो जो संभवतः इस जीवन में प्रभु के लिए कर सकते हो।
प्रभु यीशु चाहता है कि हर मसीही को ईमानदार सेवक होना चाहिए। ये जरूरी है कि हर कोई अपना घर प्रभु यीशु की चट्टान पर बनाए, क्योंकि एक भयंकर तूफान उठा है जो हर एक की धार्मिकता की जांच पूरी रीति से करेगा। इसलिए रेत को छोड़ दो, शैतान को छोड़ दो और चट्टान को थाम लो, गहरी नींव खोदो, पक्का घर बनाओ जो हमेशा का हो,
आंसुओं से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने से सभी अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। कालेब जैसे मनुष्यों की आज के अंतिम समय में सबसे ज्यादा जरूरत है, एक स्वर्गीय तराजू।
चरित्र को जांचने वाला एक तराजू लगातार काम कर रहा है। प्रभु के दूत आपके नैतिक जीवन का हिसाब, आपकी जरूरतों की निश्चितता और आपके जीवन का हर मामला प्रतिदिन परमेश्वर के सामने रखते हैं। हमें अपनी काबिलियत के अनुसार एक बिंदु भी कम काम करने पर व्यक्तिगत रूप से जवाबदार ठहराया जाएगा। प्रभु हरेक मामला पूरी सतर्कता से हर तरह से जांचता है। हरेक कार्य करने की क्षमता को उसके कितने उपयोग में लाए जाने और उपयोग में न लाए जाने दोनों का हिसाब रखता है, और वे काम भी जो सुधार लाए हैं। इन सब बातों से प्रभु हमें हमारी योग्यता अनुसार उसका काम करने देता है, क्योंकि उसकी दी गई योग्यता का उपयोग न करने की जवाबदेही हम ही से ली जाएगी। हमारा न्याय इस बात से होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए था और हमने उसे पूरा किया कि नहीं, ना ही अपनी सामर्थ्य का उपयोग प्रभु की महिमा करने में किया। यदि हम अपनी स्वयं की आत्मा को खो देंगे तब भी उसका परिणाम अनंत काल तक भुगतना होगा, क्योंकि हमने अपने तोड़ों का इस्तेमाल किया ही नहीं। हमारा सारा ज्ञान और योग्यता जो हमें प्रभु से प्राप्त हुई है उसे व्यर्थ न गंवावें, वरना हमेशा का जीवन गंवा देंगे। क्या क्या हो सकता था यदि प्रभु के हरेक सिपाही ने अपना कर्तव्य जी जान से पूरा किया होता। हरेक दरवान ने सियोन की दीवारों की चौकसी पूरे समय तुरही फूंक कर लोगों को आने वाले समय की चेतौनियों से आगाह करा दिया होता तो संपूर्ण जगत यह जान गया होता। किंतु अभी भी काम कई वर्षों पीछे चल रहा है। जब सब सो रहे होते हैं तभी शैतान अपना काम कर जाता है।
आओ अभी भी अपने दिए गए काम को पूरा करने में लग जाएं, तथा सभी स्त्री व पुरुषों को आने वाले खतरे के बारे में सचेत कर दें। यदि हर एक सब्बत को मानने और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में लगा एडवेंटिस्ट इस सुसमाचार को फैलाने में लग जाएं, तो प्रभु में विश्वास करने वालों की संख्या अभी के मुकाबले कितनी अधिक हो सकती है। अमेरिका के सारे शहरों में कितने हैं जिन्होंने सुसमाचार सुना और परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू कर दिया है। यदि परमेश्वर का पृथ्वी के लोगों के लिए उसकी करुणा वदवाया का सुसमाचार पहुंच चुका होता तो प्रभु यीशु का आगमन हो गया होता और संतों को स्वर्ग में प्रवेश मिल गया होता। स्वर्ग की नामावली। जगत को सुसमाचार प्रचारकों की आवश्यकता है, अपने अपने स्थानों पर रहकर प्रभु का काम करने वाले लोगों की। यदि वे प्रचारक नहीं होते हैं तो उनका नाम एक मसीही के रूप में स्वर्ग की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें भविष्यवाणी की आत्मा नहीं। यदि कलीसिया के लोग व्यक्तिगत रूप से इस काम को नहीं करते हैं तब वे ये दर्शाते हैं कि उनके जीवन का संबंध परमेश्वर से नहीं है। उनके नाम काम न करने वाले आलसियों के रूप में दर्ज हैं।
हर धार्मिक कार्य जिसके होने में परमेश्वर की इच्छा होती है, ऐसे कार्यों में हिस्सा लेने से अपने आप को कुछ अलग कर लेते हैं और किसी भी प्रकार की मद करने से इनकार कर देते हैं। ऐसों के लिए अच्छा होगा कि वो याद रखें कि इसका रिकॉर्ड स्वर्ग में रखा जा रहा है, एक किताब जिसमें कोई रद्दोबदल, कोई परिवर्तन, ना ही कोई गलती होगी, और उसी के आधार पर न्याय सुनाया जाएगा। वहां हर वो अवसर जहां प्रभु का प्रचार करने से इनकार किया गया लिखा गया है, और वहीं वे सारे कार्य जो प्रभु से प्रेम व विश्वास के खातिर किए गए वे कभी भुलाए नहीं जाएंगे। 23 अक्टूबर 1879 की लगभग 2 बजे सुबह प्रभु का आत्मा मुझ पर आकर ठहर गया और मैंने आने वाले न्याय के दिन का दर्शन देखा। हजारों हजार की संख्या में लोग एक बहुत बड़े सिंहासन के सामने खड़े थे और उस सिंहासन पर राजा की सी शान का व्यक्तित्व बैठा दिखाई पड़ा। उसके सामने कई पुस्तकें थीं और उन पर सुनहरे अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था, और वो आग की लपटों की तरह दिखाई पड़ता था जो स्वर्ग का लेखा था। उनमें से एक पुस्तक जिनमें उन लोगों के नाम दर्ज थे जो परमेश्वर की सच्चाई में विश्वास करते हैं खोली गई। तभी अचानक वे अनगिनत करोड़ों लोग जो सिंहासन के पास खड़े थे मुझे दिखाई न दिए, किंतु केवल वे जो अपने कामों द्वारा परमेश्वर की ज्योति के बेटे बेटियां थे, जो सच्चाई में खड़े थे दिखाई दिए और मैं उन्हीं को देखने में लीन हो गई।
एक किताब और खोली गई जिसमें उन लोगों के पाप दर्ज थे जिन्होंने सच्चाई को जाना था। उस पुस्तक का शीर्षक केवल स्वार्थीपन था जिसमें दुनिया भर के पाप आ गए। एक वर्ग के लोगों के नाम दर्ज थे जो धरती के बोझ थे। जैसे ही न्याय करने वाले की तेज निगाहें इन लोगों पर पड़ी, उनके नकारने का पाप साफ दिखाई देने लगे। पीले पड़े हुए चेहरे और कांपते होठों से उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पवित्र विश्वास के प्रति विद्रोह किया है। इन्हें कई बार मौके मिले, चेतौनियां भी मिली, किंतु इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपने आप में सुधार नहीं लाए। अब वे देख सकते थे कि वे प्रभु की दया पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए थे। बिल्कुल सही, इनके पास क्षमा मांगने का समय नहीं रह गया था जो बुरे और बिगड़े हुए लोग करते हैं। वो तो उस अंजीर के पेड़ के समान श्रापित लोग थे जो फल नहीं लाए थे। इन्हें प्राप्त तोड़ों का इस्तेमाल इन लोगों ने प्रभु के काम को करने में नहीं किया था। इस वर्ग के लोगों ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना और परिश्रम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया। वे परमेश्वर में धनी नहीं थे और परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाने लायक नहीं थे। ये केवल परमेश्वर के दिखाए सेवक थे। वे कोई आत्मा जीत नहीं पाए। यदि परमेश्वर का काम इन लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाता तो प्रचार कार्य अधर में लटका रह जाता, क्योंकि इन लोगों ने न तो अन्य लोगों को और न ही स्वयं को बचाने के लिए प्रयास किए। ऐसे लोगों ने प्रभु के विरोधी को अपने प्रभु की दाख की बारी में काम करने दिया और अपने कंधों पर भारी बोझ अपने स्वार्थ से उठाकर चलने लगे।
उससे इन्होंने पूरा समय अपने स्वार्थपूर्ण जीवन को जीने में लगाया। न्यायी ने कहा, सभी उनके विश्वास और कार्यों के अनुसार परखे जाएंगे। इन लोगों का प्रभु के प्रति इनकार किस प्रकार सामने आया, और ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की योजना सभी के लिए सभी की योग्यता अनुसार काम सौंपना और करवाना है, ताकि मुख्य उद्देश्य पूरा हो और बहुत से साथी बचाए जाएं। हरेक को अपने परिवार और अपने आस पड़ोस में प्रभु के विश्वास को जीवंत करना है, उसकी जीवित गवाही देना है, लोगों पर दया दिखाकर, दुखी व मुसीबत के मारे हुओं के प्रति सहानुभूति दिखाकर, सुसमाचार का प्रचार कर और परमेश्वर के काम में मदद, उसी के द्वारा दिए गए साधनों, गुणों व तोड़ों का सही उपयोग कर पूरे करना है। किंतु कुछ लोगों पर मिरोस के समान उन पर परमेश्वर की ताड़ना प्रकट हुई जब उन्होंने वो काम नहीं किया जो सौंपा गया था। उन्होंने तो वे काम ही किए जो उन्हें इस जीवन में अत्यधिक लाभ पहुंचा सकते थे। वे स्वर्गीय जीवन के आनंद को भूला बैठे थे। इसीलिए उस किताब में उनके नामों के सामने भले काम करने के बदले शोकित करने वाला खाली स्थान था। वहां कुछ भी नहीं लिखा था। पूर्वजों से अधिक काम करने की जरूरत।
हमें हमारे पूर्वजों से अधिक सच्चाई की रोशनी प्राप्त हुई है तो हम उन्हीं के समान आदर सम्मान के योग्य नहीं हैं, ना ही हमें उनके बराबर काम करके परमेश्वर के योग्य ठहर सकते हैं। यदि हम भी वही आदर सम्मान व परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम में भी उनके समान विश्वास योग्य, आज्ञाकारी और परमेश्वर के लिए जोश से काम करने का जज्बा होना चाहिए। हमारा जीवन उन्हीं के जैसा प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित और निर्भर होना चाहिए। उनके जैसे किए गए काम भी करने होंगे। हमें परमेश्वर की अगुवाई में उसकी रोशनी में चलना है जो सदा हमें मिलती है, वरना हमारे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ न होगा। आलसी कलीसिया के लिए एक निवेदन, एक सोई हुई कलीसिया से गुजारिश। ये बड़ी ही अजीब व रहस्य की बात है कि जहां 100 लोग काम में लगे होने चाहिए थे, वहां केवल एक ही काम में लगा है। स्वर्ग और उसकी सेना उन लोगों की ये काम चोरी, निष्क्रियता और काम के प्रति सूचीबद्धता न पाकर अचंभित होते हैं। उनके लिए जो अपने आप को परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का दावा करते हैं, सच्चाई में जीवन देने की शक्ति है।
हम कभी भी बिना कुछ काम किए और आलसी होकर अपने आप को नहीं बचा सकते हैं।
ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि कोई सच में प्रभु में विश्वास करने वाला मजबूर हो और अपना जीवन व्यर्थ में कुछ काम किए बिना ही बिता दे। और ये असंभव है कि ऐसा कोई स्वर्ग जा सके। कोई भी ऐसा निष्काम व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर का काम करने से इनकार करता है, वह स्वर्ग में भी सहयोग नहीं करेगा। ऐसों का स्वर्ग में पहुंचना सुरक्षित नहीं होगा। संपूर्ण स्वर्ग बड़ी उत्सुकता से यह देख रहा है कि कलीसिया का हर एक सदस्य अंधेरे में बैठे लोगों को प्रभु की रोशनी में लाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि तुम्हारा संबंध महान परमेश्वर के साथ है, और वह कोई बच्चा या नादान नहीं जिसे तुम बातों से बहला सकते हो। ना ही उसके बताए काम को अपनी इच्छा हो तब करोगे और चाहो तो बिना किए छोड़ भी सकते हो। स्वर्गीय प्रबुद्ध शक्तियां मानवीय माध्यमों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, किंतु कलीसिया के लोगों ने उनकी उपस्थिति की परवाह ही नहीं की। स्वर्ग दूतों की सेना भी मनुष्यों व कलीसिया के सदस्यों के साथ उस महान कार्य में सहयोग करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब तक उनसे मध्य पाने के लिए कोई आया ही नहीं। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
अनेकों अनेक ऐसे लोग हैं जो प्रभु का दिन नजदीक आने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियां से पीछे हट गए हैं और धार्मिक होने के मामले में बौने ही रह गए हैं। अब तक के उनके जीवन के इतिहास के पन्ने केवल खाली होने के अलावा कुछ नहीं। वे प्रभु के बाग के वृक्ष तो हैं, लेकिन केवल उतनी भूमि व्यर्थ में घेरे हुए हैं। यदि वहां कोई अन्य फलदार वृक्ष लगाया होता तो वह कम से कम फल तो देता। उन लोगों के लिए जो प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, ये बड़ी गंभीर बात है कि प्रभु का आत्मा उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। उसके अनुग्रह से वे दूर हो जाएंगे, जिनके पास सारे साधन उपलब्ध हैं और साथ ही अवसरों की भी कमी नहीं। वे तो केवल चुप बैठे रहते हैं। अब सोने का समय बाकी नहीं रहा। व्यर्थ बातों में समय गंवाने से भी कोई फायदा नहीं। जो अभी भी नींद में गाफिल सोते हैं, वे कीमती समय व अवसर गंवा देंगे, जबकि वे प्रभु के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। हमें आशीष भरी नेमत मिली है कि हम परमेश्वर के खेत में से फूले बटोरने का काम करें और हर एक जीती गई आत्मा प्रभु यीशु के ताज में एक सितारे जैसा होगा, जो हमारे महिमामयी प्रभु हमारे उद्धारकर्ता का होगा। वह प्रभु जो अपने युद्ध के हथियारों को व्यवस्थित कर रहा है ताकि युद्ध को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके। तब तक उसे नई जीत नहीं मिल जाती और नई नई ट्रॉफियां अनंत काल के लिए प्राप्त नहीं हो जाती।
स्वर्गीय संदेशवाहक अपना काम लगातार कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? भाइयों और बहनों, प्रभु हमें बुलाता है कि हम समय बचाएं, प्रभु के निकट आएं, अपने आंतरिक गुणों को उबारें और जो सत्य को बहुत करीब से अच्छी तरह से जानने का शुभ अवसर प्राप्त कर चुके हैं, अपने उस ज्ञान को दूसरों में बांटकर लोगों की भलाई करें। बार बार प्रभु की प्रार्थना में ये दोहराना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कहां तक सही है, जबकि हम अपने घरों में बैठे हुए प्रभु की सच्चाई की रोशनी दूसरों तक पहुंचाने के काम में मद नहीं करते? किस तरह आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से अपने और अपने परिवार के लिए आशीषों की बारिश की दुआ मांग सकते हो, जबकि दूसरों के लिए आप कुछ करते ही नहीं?
हमारे बीच में कई हैं जो यदि अपने आप के बारे में सोचे तो पाएंगे कि उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए गुणों का उपयोग प्रभु के काम में न करने से प्रभु का इनकार किया है। भाइयों और बहनों, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु और उसके सारे स्वर्गदूत हमारे कठोर हृदयों के प्रति बहुत ही खेदित हैं। प्रभु यीशु ने तो अपनी जान दे दी कि सभी बचाए जाएं, किंतु तुम्हें तो पता है कि वह कितना प्रेमी है। उसके इस अनुग्रह को लोगों तक पहुंचाने को छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, जिनके लिए उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। इतनी लापरवाही और कर्तव्य के प्रति नकारात्मकता स्वर्गदूतों को अचंभित करती हैं। न्याय के दिन तुम्हें उन आत्माओं से सामना करना पड़ेगा जिन्हें तुमने प्रभु का समाचार नहीं सुनाया।
उस न्याय के महान दिन तुम आप ही अपराधी ठहरोगे और खुद ही दंड के भागीदार होगे। काश कि प्रभु आज ही तुम सब लोगों को पछतावे का अवसर प्रदान करें। काश कि प्रभु उन्हें क्षमा करें जिन्होंने उसकी दाख की बारी में काम करने से इनकार किया, जो काम उन्हें सौंपा गया था। कलीसिया के उन आलसी लोगों को क्या कहा जाए कि वे ये महसूस करें कि उन्हें अपना गुण लोगों में बांटना है ताकि वे भी बदल जाएं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई भी आलसी और कामचोर न होगा। काश कि परमेश्वर इस बात को सारी सोई हुई कलीसियाओं के लिए विशेष महत्व देने को कहे। काश कि प्रभु की सियोन नगरी उठ खड़ी हो, अपना वह सुंदर महीन वस्त्र पहन ले और प्रभु की ज्योति से ज्योतिमान हो जाए।
वही काम हम सबको करना है जो दूसरों ने हमारे लिए किया था जब हम अंधकार में थे और हमें प्रभु यीशु की सच्चाई से परिचित कराया गया था। बहुत देर हो चुकी है, कलीसियाएं अभी भी सो रही हैं, निष्क्रिय हैं। अब तक कई आत्माओं को सच्चाई की रोशनी प्रदान कर दी जानी थी। प्रभु ने प्रत्येक को अपना काम सौंपा है। अपने काम को करते हुए हम आगे बढ़ें, न कि पीछे हो जाएं। हर दिन लोगों के मनों को बदलने काम तेजी से होना चाहिए। हर एक के हृदय परमेश्वर के प्रेम से धड़कने लगें। चुप ना हो जाएं, किंतु आत्माओं की जीतने का माध्यम बनें।
प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर एक परमेश्वर का बेटा व बेटी सिर्फ पाप व बुरे कामों से दूर न हो, बल्कि लोगों की भलाई के काम भी बढ़ चढ़कर करें, नम्र बने तथा स्वयं का इनकार करें। प्रभु यीशु ने स्वयं इस बात को दर्शाया है कि कार्य करने के नियम तो मन में रखे और कार्य रूप में परिवर्तित करने में देरी न करें। वो कहता है, जिसके पास नहीं है उससे भी जो दिखाई देता है ले लिया जाएगा, क्योंकि उन्हें अवसर तो मिले किंतु उन्होंने काम में सुधार नहीं लाए। जिन्हें प्रभु का अनुग्रह प्राप्त है किंतु वे भी यदि निष्क्रिय हैं और कुछ करने की इच्छा नहीं रखते, आखिरकार अपने सोने नींद में गाफिल होने के कारण सब कुछ खो देंगे। आने वाले समय के लिए वे कोई प्रयास कोई काम करना नहीं चाहते और अनुभवी होने की जरूरत नहीं समझते, न ही स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाकर स्वयं एवं दूसरों को बताते हैं, ताकि जब उन पर परीक्षा की घड़ी आ पड़े तो वे खड़े रह सकें। जब परीक्षा और ताड़ना आते हैं तब इस तरह के लोग आत्मविश्वास और भरोसा खो देते हैं और उनका आधार ही नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने अपना आधार पक्का करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। उन्होंने अपनी नींव प्रभु यीशु की चट्टान पर रखी ही नहीं।
उस अंतिम न्याय के दिन ये देखना कितना भयानक होगा कि जिनके साथ हम पारिवारिक रूप से इतने जुड़े हुए थे वे हमसे हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। हमारे परिवार के सदस्य शायद हमारे बच्चे बचाए नहीं गए। वे लोग जो हमारे मित्र मिलने जुलने वाले, जो हमारे साथ मेज पर खाना खाते थे, खो चुके हैं। तब हम अपने आप से पूछेंगे, क्या ये मेरे धीरज न धरने के कारण, मेरे द्वारा मसीह का सा जीवन न जीने के कारण, या फिर मेरे स्वार्थी होने के कारण था कि प्रभु यीशु और मसीही धर्म उनके लिए रुचिकर साबित नहीं हुआ? पूरे जगत को ये चेतावनी दी जानी चाहिए कि प्रभु की आमद निकट है। हमारे पास समय बचा ही नहीं और काम करने के लिए कई वर्ष बीत गए और अब तो अनंत काल का समय निकट आ गया है, और अब तक परमेश्वर के राज्य की खोज और उसकी धार्मिकता तथा उसकी सच्चाई की ज्योति लोगों तक पहुंच जानी थी। परमेश्वर लोगों को बुलाता है जो सच्चाई जानते और विश्वास में मजबूत हैं। ऐसों पर परमेश्वर के काम का भारी बोझ डाला गया है, जिससे वे न केवल अपने लिए किंतु दूसरों के लिए वो काम करें जो उन्होंने पहले नहीं किया। हर योग्यता का उपयोग करें, हर शक्ति का प्रयोग करें, हर रोचक गुण व सच्चाई की ज्योति जो मिली है वो दूसरों को ली है। प्रचारक न बने किंतु प्रभु के सेवक बने। प्रभावपूर्ण दृष्टांत।
मनुष्य की खातिर परमेश्वर का अत्यंत गहरा प्रेम, जिसे नापा नहीं जा सकता, वो उमड़ पड़ा है। स्वर्गदूत भी फख्र करते हैं ये देखकर कि परमेश्वर अदना से प्राणियों के लिए इतना कष्टज्ञ है, जबकि वे केवल प्रेम का एक कदम ही बढ़ाते हैं।
दूत मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के प्रेम की थोड़ी सी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाते हैं। संपूर्ण स्वर्ग ठगा सा खड़ा रह जाता है ये देखकर कि मनुष्यों की आत्मा परमेश्वर के प्रेम का इनकार करती हैं। क्या हम ये जान पाएंगे कि प्रभु यीशु इस बारे में क्या सोचते हैं? एक माता पिता को कैसा महसूस होगा जब वे अपने बच्चे को, जो ठंड और बर्फीले स्थान में खो गया, वो इतना आगे निकल गया है कि अब वे उसे बचा नहीं सकते, जबकि वे चाहते तो थे कि वो बच जाए। वे कितने दुखी होंगे, अपने आप पर क्रोधित होंगे। क्या वे उन हत्यारों को बुरा भला नहीं कहेंगे, अपनी नजरों से गिरा नहीं देंगे आंस की तरह, क्योंकि वे अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। हर एक मनुष्य का दुख तकलीफ परमेश्वर को दुखित करती है, क्योंकि वो हमारा पिता और हम उसकी संतान हैं। किंतु जो हाथ ऐसे लोगों को मृत्यु की आग से बचाने के लिए मद नहीं करते, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं।
मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा है जो ठंड के मौसम में बर्फीले स्थानों से होता हुआ जा रहा था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसका चलना कठिन हो रहा था और कुछ देर बाद तो ठंड के प्रभाव से वह निश्चल होने लगा। उसकी ताकत जवाब दे गई और आखिरकार ठंडी ने उसे जकड़ लिया और वो ठंडा होकर मरने पर था। तभी उसे अचानक उसके जैसे एक यात्री भाई की कराहट सुनाई दी। वो भी ठंड के कारण मरने पर था। इस व्यक्ति के मन में मानवता जागी और उसको बचाने के लिए गया उसने हाथ से बर्फ से ढके उस आदमी को बाहर निकाला, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उस गहरी व खतरनाक खाई को पार कर गया, जो उसने सोचा था कि वो अकेला उसे पार नहीं कर पाएगा। और जब वो उस साथी यात्री को सुरक्षित स्थान पर ले आया, और सच तो ये था कि वो उसे घर ले आया था, उसके पड़ोसी को बचाने के कारण वो खुद भी बच गया था। ठंड के कारण जो उसका खून जमने लगा था, अब काम करने के कारण उसमें गर्मी आ गई और उसके अंग काम करने लगे थे। इस प्रकार की शिक्षा हमारे विश्वासी नौजवानों को लगातार दी जानी चाहिए, ताकि न केवल सलाह व हिदायतें बल्कि ऐसे जीवंत उदाहरण उन्हें उनके मसीही अनुभव को बढ़ाने व अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद करेंगे। तुम्हें अपने आप को अपने तक सीमित नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सच्चाई का ज्ञान से आशीषित किया गया है। तुम्हें किसने सच्चाई बताई? परमेश्वर के वचन के पास तुम्हें कौन ले गया? परमेश्वर ने जो ज्योति तुम्हें दी है उसे झाड़ी में छिपाने के लिए नहीं दी।
मुझे एक जंगल यात्री के बारे में पढ़ने को मिला जिसमें एक समूह को सर जॉन फ्रैंकलिन को खोज निकालने का काम दिया गया था। बहादुर लोगों में अपना घर छोड़कर उत्तरी समुद्र के इलाके में भूख, ठंड और निराशा से भटकते रहे, और ये सब वे क्यों कर रहे थे? केवल इसलिए कि वे उन मरे हुए लोगों का मस्त शरीर ढूंढ लें और यदि इनमें से कोई बचा है तो उसे सुरक्षित ला सकें। एक ऐसी भयंकर मृत्यु जो उन पर आ सकती थी यदि सही समय पर मद नहीं पहुंचे। यदि वे इस दौरान किसी एक व्यक्ति को भी बचा लेते तो उन्हें उनकी मेहनत और तकलीफों का सिला मिल जाता। ये केवल तभी हो सका जब लोगों ने अपनी खुशी और आराम का बलिदान दिया। इनके बारे में सोचिए, कीमती जीवनों को बचाने के लिए हम कितना बलिदान करते हैं। हमें ये नहीं कहा जाता कि हम घर छोड़कर बाहर जाएं, कोई लंबी या कष्टदायक यात्रा करें। उन मृत्यु के करीब खड़ी हुई आत्माओं के लिए हमारे दरवाजे पर, पड़ोस में, हर तरफ लोगों को बचाना है, ताकि वे अनंत मश्च प्राप्त न करें। स्त्री व पुरुष बिना परमेश्वर, बिना आशा के मर रहे हैं। क्या हमारी सोच मर चुकी है? हम ऐसे लोगों के लिए क्या ये कहते हैं कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कुछ लोग जिन्होंने आत्माओं को बचाने में अपनी जान गंवा दी, उन्हें संसार ने नायक और शहीदों के रूप में सदा याद किया है। फिर हम जिनके पास अनंत जीवन की आशा है, क्या अनुभव करते हैं कि जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने छोटे छोटे बलिदानों से आत्माओं को उद्धार का मार्ग क्यों न दिखाएं?
न्यू इंग्लैंड के एक शहर में एक कुआं खोदा जा रहा था। जब काम खत्म होने पर था, एक व्यक्ति अभी भी नीचे था। अचानक जमीन में गड़ा हो गया और वो उसमें दब गया।
तुरंत खतरे की घंटी बजी और मैकेनिक, किसान, व्यापारी, वकील दौड़कर उसे बचाने पहुंच गए। रस्सियां, सीढ़ियां, फावड़े, कुदाली आदि लाए गए उन लोगों के द्वारा जो उसे बचाना चाहते थे। सब चिल्ला रहे थे, उसे बचाओ, उसे बचाओ। आदमियों ने पूरी ताकत लगा दी, माथे से पसीना बहा दिया और हाथ मेहनत करते करते कांपने लगे। फिर भी वे रुके नहीं। आखिर में एक पाइप जमीन में नीचे पहुंचाया गया और ये जानने के लिए कि वो आदमी जिंदा है कि नहीं, उसे आवाज दी गई। उसका जवाब मिला कि वो जिंदा है, किंतु यदि जल्दी नहीं की गई तो खतरा बढ़ सकता है। उस आदमी के जिंदा होने की खबर ने लोगों में नई जान, नया जोश भर दिया और उन्होंने उसे बाहर सुरक्षित निकाल लिया और सब ओर ये आवाज गूंज गई, वो बचा लिया गया है। क्या ये घटना बड़ी जोशीली और रोचक थी कि एक आदमी को बचा लिया गया है? बिल्कुल नहीं। किंतु एक आदमी का सांसारिक जीवन का खोना और एक आत्मा के खोने में काफी अंतर है। जब एक व्यक्ति को मरने के डर से लोगों के हृदय इतने विचलित हो जाते हैं तो एक व्यक्ति की आत्मा को बचाने के लिए लोगों को अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो उस खतरे से परिचित हैं, जानते हैं कि मसीह यीशु के बिना अनंत जीवन संभव नहीं। क्या प्रभु के सेवकों को उसी महान भावना के साथ परिश्रम नहीं करना चाहिए ताकि बहुत सी आत्माओं को प्रभु यीशु के उद्धार के पास लाया जा सके, जिस प्रकार उस कुओं में दफन आदमी को बचाने में किया था?
धार्मिक व्यवस्था बनाम वर्णन। हर एक सच्चाई जो हृदय से ग्रहण की जाती है उसका प्रभाव जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए। यह प्रभु के प्रेम की प्राप्ति का वो बड़ा हिस्सा है जिसे मनुष्य चाहता है उसकी शक्ति को अन्य लोगों पर जाहिर करें, और उनका यही काम उनकी स्वयं की आत्मा में गहराई से उसकी प्रभावशील तीव्रता को दर्शाता है। हमारा विश्वास अच्छे कर्मों से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि विश्वास कामों के बिना मृतक है। वे सब जिन्हें सुसमाचार का संदेश प्राप्त हुआ है और उसे उन्होंने हृदय की गहराइयों से पाया है, तो अवश्य है कि वे उसे सुनाने को उत्साहित होंगे। स्वर्ग से उतरा प्रभु का प्रेम अवश्य ही अपनी छाप ढूंढ लेगा। हमें अपने परमेश्वर की प्रशंसा पूरी तन्मयता से करना चाहिए, जिसमें अपनी सारी शक्ति उसकी महिमा को आगे और आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। हमारा विश्वास वर्तमान समय में केवल तीसरे स्वर्गदूत के संदेश पर आकर रुक नहीं जाना चाहिए, जिस पर हमारा पूरा विश्वास और सहमति पाई जाती है। हमारे पास आत्मा का तेल, जो प्रभु यीशु का अनुग्रह है, भी होना चाहिए, जिससे हमारा दिया जलता रहे और दूसरों को जीवन की ज्योति से चमका सके, उन्हें वो मार्ग बता सके जो अंधकार में है। तुम्हारी आत्मिक सामर्थ्य और प्रभु यीशु की आशीषें आपके लिए काफी हैं। प्रभु के प्रेम को बताने के काम के लिए साथ ही वे भले काम जो तुम करते हो, अधिक और अधिक काम किया जा सकता है प्रभु के लिए। यदि हरेक जिसे सच्चाई की रोशनी मिली है वो सच्चाई के कार्य भी करें।
मुझे दिखाया गया कि एक जाति के रूप में हम में काफी कमजोरियां, कमियां हैं। हमारे काम हमारे विश्वास के अनुसार नहीं हैं। हमारा भरोसा ये गवाही देता है कि हमें एक बहुत ही गंभीर और जरूरी संदेश को सुनाने का काम सौंपा गया है, जो इसके पहले इस संसार के मरनहारों को कभी दिया ही नहीं गया। तब भी इस सच्चाई के नजरिए से हमारा परिश्रम, जोश, हमारी स्वार्थ का परित्याग करने वाली योग्यताओं को कार्य के नजरिए से तुलना नहीं किया जा सकता है। हमें मृतकों में से जी उठना है और प्रभु यीशु हमें जीवन देगा। जाओ और सच्चाई का प्रचार करो जैसा तुम विश्वास करते हो। वे लोग जो आपको देखते हैं उनके लिए एक मिसाल बनो, ताकि जो परिश्रम तुम करते हो वो उनके लिए जीवित सच्चाई देख पड़े। मसीही के समान जीवन मसीह धर्म को आगे बढ़ाने का एक शक्तिशाली मुद्दा बन सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो नाम मात्र के मसीही हैं, उनके मन परमेश्वर के काम को करने में लगे नहीं होते। वे सिर्फ ऊपरी तौर से मसीही चोला पहने हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा करके वे सब अपने लिए और अधिक विनाश को ही लाते हैं। वे स्वयं ही शैतान के हाथों अपनी आत्माओं को धोखा देने वाली उसे ही सफल बनाने वाले माध्यम साबित होते हैं।
जो प्रभु यीशु के आमद की बाट जो रहे हैं। वे सच्चाई का पालन करते हुए अपनी आत्माओं को शुद्ध कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक बाट जोहने के अलावा वे ईमानदारी से परमेश्वर का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु द्वार पर ही है। उनका काम करने वाला आत्मा स्वर्गीय प्रतिभाओं के साथ एकजुट होकर कार्य करने को लालायित रहता है, ताकि आत्माओं को उद्धार मिल सके। ये वे विश्वास योग्य दास हैं जो प्रभु के भवन में उनके हिस्से का मांस सही समय में चढ़ाते हैं। यही सत्य की घोषणा कर रहे हैं जिसकी आज के समय में विशेष रूप से मान्य है। जैसे हनोक, नू, अब्राहम और मूसा ने उनके समय में सच्चाई का प्रचार किया, वैसे ही प्रभु के बंदे अपने समय की संतानों को विशेष चुनौतियां देंगे। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होना इस बात पर निर्भर नहीं कि हमने कितनी सच्चाई पाई है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि हमने उस सच्चाई को कितने लोगों में बांटा। इसी तरह यदि अन्य जाति भी, यदि जहां तक उनको समझ में आता है, बुराई न कर अच्छे व सही काम करते हैं, वे ज्यादा अच्छी जगह अपना स्थान बना रहे हैं। उनकी अपेक्षा जिनके पास वचन की रोशनी तो है, वे प्रभु का काम करने का दिखावा भी करते हैं, किंतु वास्तव में वे सच्चाई को अपमानित करते और उनके आचरण उसके विपरीत होते हैं।
ये हर एक मसीही के लिए सुअवसर है कि वे न केवल मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करें, बल्कि उसकी जल्दी आमद के लिए काम भी करें। काश कि वे सब जो मसीही कहलाते हैं उनकी महिमा के लिए बीज बोएं एवं फलवंत हों, ताकि पूरे जगत में सुसमाचार पहुंच सके। जल्दी ही अंतिम महान फसल पक कर तैयार हो जाएगी और तब प्रभु यीशु अपने कीमती फसल के दाने बटोरने आ जाएंगे। मसीहियों को अब उठ खड़े होना चाहिए इस काम को करने के लिए जिसे उन्होंने अभी तक करने से इनकार किया था, क्योंकि उनकी स्वयं की आत्मा का उद्धार उनके स्वयं के द्वारा किए गए प्रयासों व परिश्रम पर निर्भर करता है। सत्वी आराधना प्रभु यीशु के साथ मिलकर काम करने में है। प्रार्थना और उपदेश देना बातें निम्न स्तर के फल है जो वृक्ष पर बार बार बांध दिए जाते हैं। वे काम जो अच्छे व दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं, गरीबों, अनाथों, विधवाओं की देखभाल करना, चिंता करना ही असली फल है जो स्वयं ही अच्छे वृक्षों पर उगते हैं। कलीसिया के हर एक सदस्य को सौंपा गया काम परमेश्वर की ज्योति को बिखेरना और प्राप्त करना, कोस करते जाना है। प्रभु की बारी में कोई भी आलसी व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वह कितने ही बहाने क्यों न बनाए। परमेश्वर के काम करने का सिद्धांत अपेक्षाकृत वह फल है जो प्रभु हम सबसे चाहता है। लोगों की भलाई के काम, मन को भाने वाले शब्द तथा गरीबों, जरूरतमंदों व परेशानी से ग्रस्त लोगों के लिए उदारता पूर्वक किए गए कार्य, वो सामरी स्त्री जो प्रभु यीशु से याकूब के कुएं पर मिली थी, उसने जैसे ही मसीह को पाया वैसे ही तुरंत जाकर उसके शहर के लोगों को उद्धारकर्ता के पास बुला ले आई। वो यीशु के चेलों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली प्रचारक साबित हुई। शिष्यों को समारिया में कुछ खास नजर नहीं आया था और वहां काम करना उत्साहजनक प्रतीत नहीं हुआ था। उनके विचार से कोई बड़ा काम करने का था कोई बड़ी जगह में। आसपास के स्थान उन्होंने नहीं देखे कि वहां सभी वे फसल बटोर सकते थे। केवल एक स्त्री के द्वारा पूरा शहर प्रभु का वचन सुनने आ पहुंचा, जिसे चेलों ने नकारा और तुच्छ समझा था। उसने तुरंत प्रभु की ज्योति को पाकर अपने लोगों में फैला दी। ये स्त्री प्रभु में विश्वास के साथ काम करने का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है।
सातवें दिन सब्बत का पालन करने वाले लगातार प्रगति कर रहे हैं, उनकी संख्या दोगुनी हो रही है।
मिशन स्थापित किए जा रहे हैं और पृथ्वी को अंधकार भरे कोनों में वे सच्चाई की पताका फहरा रहे हैं। तब भी परमेश्वर का काम धीमी गति से चल रहा है। क्यों? कलीसिया का हरेक सदस्य अभी तक पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हुआ है, जिससे कि जो काम वह बलपूर्वक कर सकते थे उसे नहीं कर रहे हैं, अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर रहे। इसीलिए योजना का हर क्षेत्र धार्मिक उत्साह व उत्तेजना की कमी के कारण और पूर्ण रूप से समर्पित, नम्र और प्रभु से डरने वाले लोगों की कमी के कारण पंगु हो गया है।
प्रभु यीशु के वो क्रूस को उठाने वाले सैनिक कहाँ हैं? उन प्रभु के डरवैयों, ईमानदार, एक मन के लोग जो केवल प्रभु की महिमा करने को हरदम तैयार रहते हैं। उठ खड़े हो, तैयार हो जाएं बुराई के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। अभी भी ऐसे बहुत से कमजोर डरपोक लोग हैं जो इस आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं। हे पिता, ऐसों की कमजोरियों को दूर कर उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे और वे इस लड़ाई में जुट जाएं और शैतान की सेना को नष्ट कर दें। यह एक विश्वविख्यात सिद्धांत है कि यदि कोई परमेश्वर की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल करने से इनकार करता है तो वह शक्ति कम होते होते खत्म हो जाती है। इसी प्रकार सत्य जिसे जीवित न रखा जाए, जिसे दूसरों को न दिया जाए, अपनी जीवन देने की शक्ति खो देता है। इसका चंगाई का गुण भी जाता रहता है।
तुम्हारी हड्डियों और मांसपेशियों को कुछ भी लाभ नहीं होगा यदि उनमें धार्मिक कार्यों को आगे और आगे बढ़ाने के लिए वो कारण नहीं हो जो तुम प्रेम की खातिर करना चाहते हो। उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए कार्य करना जरूरी है। वे जो अपना मसीही जीवन को जीने के परिश्रम करते, उन आशीषों को स्वीकार करते हुए जो प्रभु के अनुग्रह के स्रोत से आती हैं, किंतु प्रभु यीशु के लिए कुछ करते नहीं, वे केवल खाते हुए जीवित हैं, काम करते हुए नहीं। और इसका परिणाम आत्मिक और सांसारिक जीवन में भी लोगों को पतन और विनाश होता है। प्रचार कार्यक्रम के साथ खतरा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम प्रचार कार्य की सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और अपने कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए प्रचार कार्य में तेजी लाते हैं, तब हमारे सामने मनुष्यों को योजनाओं और उनकी विधियों पर भरोसा करने का खतरा बढ़ जाता है। तब कार्य प्रार्थना की कमी और विश्वास की कमी से होते हैं। हम खतरे में पड़ सकते हैं यदि परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि उनके बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। हम ये न सोचें कि कई बार मनुष्यों का नजरिया ऐसा होता है, फिर ये मान लेना कि मनुष्य कुछ नहीं करता गलत होगा। वो कर सकता है, किंतु ज्यादा सफलता पाने के लिए उसे स्वर्गीय उपहार पवित्र आत्मा को ग्रहण करना होगा।
एक समय आएगा जब पूरी कलीसिया स्वर्गीय शक्ति से भर जाएगी और सब ईमानदारी काम कर परिणाम तक पहुंचेंगे, क्योंकि जीवन देने वाली शक्ति जो पवित्र आत्मा की है, वो उनके लोगों को उत्साहित करेगी कि वे निकल जाएं और आत्माओं को यीशु के पास लाएं। किंतु जब ये कार्य संपन्न होगा तब बहुत ही मेहनती सेवक सुरक्षित होंगे, क्योंकि वे लगातार प्रभु की प्रार्थना और पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहकर कार्य करते हैं। उन्हें परमेश्वर के अपनी विनतियों के द्वारा प्रभु यीशु से प्राप्त अनुग्रह के द्वारा बचाए जा सकते हैं कि वे स्वयं इस काम को नहीं कर सकते थे। वे गर्व करने से बचते और सारे काम को करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। उन्होंने केवल लगातार प्रभु यीशु की तरफ ताकना है, ताकि वे ये समझ सकें कि सारा काम प्रभु की ताकत से पूरा होता है और इस तरह प्रभु को संपूर्ण महिमा प्रदान करें। हमें भी बुलाया जाएगा उन कामों को पूरा करने के लिए जो प्रभु हमें सौंपेगा। तब स्वर्गीय पिता की प्रार्थना करना जरूरी होगा। तब घर में, कलीसिया में और परिवारों में सभी को प्रार्थना करना जरूरी होगा।
रब्बियों के अनुमान के अनुसार धर्म का सार ये है कि वो हमेशा वृद्धि करता रहे। अपनी सर्वश्रेष्ठ धार्मिकता दिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे अनोखे कार्य करें जो धार्मिकता दर्शाए। इस प्रकार उनकी स्वयं की निर्भरता के कारण वे परमेश्वर से दूर हो गए और अपने आप को स्वयं की धार्मिकता के अनुसार ढाल लिया। ये खतरा आज भी लोगों में पाया जाता है। जैसे जैसे मनुष्य धार्मिक क्रियाकलापों में ज्यादा बढ़ता है, वो हर एक जो परमेश्वर के लिए करता है सफल होता है। और खतरा तभी होता है क्योंकि मनुष्य प्रभु के लिए बनाई गई योजना और तरीकों से अपने आप पर ज्यादा भरोसा करने लगता है, परमेश्वर को भूल जाता है। वो ना तो प्रार्थना करता और ना ही विश्वास करता है। पतरस की तरह हम भी प्रभु से अपना ध्यान हटा लेते हैं और हमारे कार्यों को हमारा उद्धारकर्ता बना लेते हैं, ये सोचकर कि ये कार्य ही हमें उद्धार दिलाएंगे। हमें पूरी तरह से हर समय प्रभु यीशु पर ही निर्भर होना है, इस बात का एहसास करके कि हर काम उसी की शक्ति व सामर्थ्य से होता है।
जब हम लोगों को उद्धार के मार्ग पर लाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तब हमें लगातार प्रार्थना करना, बाइबल से वचन पढ़कर अगुवाई पाना और वचन पर मनन करने की आवश्यकता है। प्रार्थनाओं के द्वारा किया गया कार्य तथा प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र किया गया कार्य ही अंत में भलाई के लिए किया गया उचित कार्य ठहराया जाएगा। मनुष्य की अपनी योजना, विधियां या कार्य नहीं। मसीही सेवकाई में नए विश्वासियों को प्रोत्साहन था।
सबसे सफल परिश्रमी लोग वे हैं जो छोटी छोटी बातों में भी प्रभु की सेवा पूरे मन से कर आनंदित होते हैं। हर एक मनुष्य की अपने जीवन का हर एक क्रिक परमेश्वर की मद पवित्र आत्मा के साथ गूंथ कर एक रूप होना चाहिए। हमें हमारे प्रतिदिन के कार्य को पूरे समर्पण उपयोगिता में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम हर एक कार्य को अनंत काल की ज्योति के रूप में देखते हैं। प्रभु की महान योजना में हर एक का एक स्थान है। वे तोड़े जिनकी जरूरत नहीं, उन्हें अधिकार नहीं होगा। हर एक का एक स्थान अनंत जीवन की योजना में है। हर एक को प्रभु यीशु के साथ मिलकर आत्माओं के उद्धार का काम करना है। स्वर्ग में स्थान प्राप्त करना इतना पक्का नहीं है जितना कि पृथ्वी पर प्रभु के लिए किए गए हमारे कार्य हमारे लिए एक विशेष स्थान तैयार करते हैं। परमेश्वर की आंखें उसके हर एक बंदे पर लगी रहती है। इसके पास हर एक से संबंधित योजना है। सभी लोग कुछ न कुछ काम अवश्य कर सकते हैं। प्रभु के समक्ष कोई भी पाप रहित नहीं ठहराया जाएगा यदि उसने ईमानदारी से निस्वार्थ कार्य नहीं किया है और प्रभु के उद्धार के लिए आत्माएं नहीं बचाई हैं। तुम्हारा काम किसी और को नहीं सौंपा जा सकता है, और कोई नहीं, तुम्हें ही अपना काम करना है। यदि तुम अपनी ज्योति अपने तक सीमित रखोगे तो तुम्हारे कारण एक आत्मा अंधकार में पड़ा रह जाएगा।
एक नम्र सेवक जो बड़ी आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की बुलाहट का जवाब देता है, वह अवश्य ही स्वर्गीय सहायक को पाएगा। एक ऐसी पवित्र और महान जिम्मेदारी को स्वीकार करता अपने आप में एक चरित्र को और निखारता है। ये काम पूरे मानसिक और आत्मिक शक्तियों को संगठित कर काम में लगाता है और मन और हृदय को पवित्र एवं शक्तिशाली बनाता है। विश्वास के द्वारा प्रभु की सामर्थ में ये कितना अद्भुत है कि एक कमजोर व्यक्ति कितना ताकतवर बन जाता, उसका परिश्रम निर्णायक और परिणाम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वो जो अपने थोड़े से ज्ञान से छोटे छोटे काम कर शुरुआत करता और लोगों को बताता है और बताने के लिए ज्ञान की खोज करता, वो स्वर्ग का सारा खजाना पाएगा और मांग पूरी करेगा। जितनी अधिक ज्योति वो बांटता है उतनी ही अधिक ज्योति पाता है। दूसरों को प्रभु के वचन को समझाने की कोशिश में स्वयं भी बड़ी सरलता से वचन को समझता है। हम अपने ज्ञान का जितना उपयोग करेंगे और सामर्थ को काम में लगाएंगे उतना ही ज्यादा ज्ञान और सामर्थ हम प्राप्त करेंगे। हरेक को परमेश्वर के लिए और आत्माओं के लिए परिश्रम करने दो। हरेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और कभी भी आलसी न हो। कोई प्रतीक्षा न करें कि कोई उन्हें आकर काम बताए और तब वे करें। वो कोई स्वयं इतनी जिम्मेदारियों से भरा है, उसकी प्रतीक्षा में समय गंवा चुके हैं। परमेश्वर ने खुद तुम्हें बुलाया है, मेरे बेटे आओ मेरी दाख की बारी में काम करो। वो तुम्हें स्वयं बुद्धिमान बनाएगा ताकि तुरंत काम कर सको। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपना हृदय कठोर मत करो।
प्रभु पहले ही बड़े प्रेम से पुत्र कहकर बुलाता है। कितना उदार, कितना चिंता करने वाला, कितना जरूरी। उसका आमंत्रण एक ललकार भी है। शैतान को दूर करने की ताकत उग्रता पूर्वक काम करके प्राप्त की जा सकती है। हर एक कार्य, हर एक न्यायपूर्ण कार्य, दया और दूसरों की भलाई का काम स्वर्ग में संगीत बन जाता है। प्रभु का आत्मा प्रचार का आत्मा है। एक प्रभु में सांटे गए हृदय का सबसे पहला कदम दूसरों को प्रभु के पास लाना होता है। प्रभु की महिमा में बढ़ने का केवल एक ही मार्ग है कि पूरे मन से रुचि पूर्वक उसके काम में जुट जाएं, जिसमें उसने हमें शामिल किया है। प्रभु का काम करने के लिए किसी बड़े अवसर की तलाश में ना रहो और ना ही अपने में अद्भुत योग्यताएं होने का इंतजार करो। वह व्यक्ति जो सारे समाज को आशीषित करता
और जीवन को सफल बनाता है, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित। अपनी सारी ताकत परमेश्वर की सेवा और अपने संगी साथियों की सेवा में लगाता है। बहुत से हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस योग्य ठहराया कि वे बढ़िया काम करें, किंतु उन्होंने बहुत कम काम किया क्योंकि उनके प्रयास बहुत कम थे। यदि तुम 100 में से 99 बार असफल हुए हो, किंतु यदि एक आत्मा भी नाश होने से बचाया है, तो प्रभु के लिए तुमने अच्छा काम किया है। परमेश्वर और प्रत्येक आत्मा के बीच जो संबंध है वह पूर्ण और विशेष है। मानो कि आत्मा और परमेश्वर के सिवा और कोई इस पूरी पश्चरी पर नहीं है जो उसकी निगरानी कर सके, और कोई जीवन नहीं जिसके लिए इससे उसने प्रिय पुत्र को दे दिया।
प्रभु देखता है और जानता है। वो तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद तुम्हें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा, यदि तुम अपने तोड़े को प्रभु की सेवा में उपहार के रूप में समर्पित करोगे। क्योंकि ऐसा काम जिसे करने की रुचि न हो, ऐसे कमजोर भी काम करने में ताकतवर बन जाते और प्रभु के आदेशों को मानने से प्रसन्न होते हैं। प्रभु की खुशी ताकत प्रदान करने का एक जरिया होता है। यदि आप ईमानदार हैं, तो प्रभु की वो शांति जो हर तरह की समस्या का हल है, वो तुम्हारे इस जीवन का इनाम होगा और भविष्य में तुम्हें प्रभु के घर में प्रवेश करने की खुशी प्राप्त होगी।
वे व्यक्ति जिनके पास कम योग्यता भी है, फिर भी वो अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम को बनाए रखता है, कई आत्माओं को प्रभु के लिए जीत सकता है। हार्लन पेज एक गरीब मैकेनिक जो कम शिक्षित और सामान्य योग्यता रखता था, किंतु उसने अपना मुख्य काम प्रभु के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए ये खोजने में लगा दिया, और उसका ये प्रयास काफी सफल हुआ। उसने अपने साथी भाइयों से व्यक्तिगत वार्तालाप करके और लगातार प्रार्थना करके उनको प्रभु के द्वारा उद्धार पाने के लिए परिश्रम किया। उसने प्रार्थना सभाएं आयोजित की, संडे स्कूल स्थापित किए, धार्मिक पुस्तकें बांटी और अन्य धार्मिक पुस्तकें वितरित की, और अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए उसके चेहरे पर अनंत काल की छाया दिखाई पड़ रही थी, और वो ये कहने के योग्य था, मैं जानता हूं कि केवल प्रभु का अनुग्रह है, ना कि मेरे किए गए कार्य की महत्ता। किंतु मेरे विचार से मैं ये कह सकता हूं कि 100 से अधिक लोगों को प्रभु की ओर फेर लाने में मैं प्रभु का कामगार बना। ये जगत मसीहियों का स्वर्ग नहीं है, किंतु केवल प्रभु की एक कार्यशाला है, जहां हम मनुष्यों को इस योग्य बनाया जाता है कि हम निष्पाप स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गीय पवित्र स्थान में एक हो सकें।
प्रभु यीशु के शिष्यों में से सबसे निर्धन और सबसे उदार व नम्र शिष्य होना दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। शायद वे ये महसूस नहीं करते कि वे कोई विशेष भलाई का काम कर रहे, किंतु उनके अनजाने प्रभाव से लोगों पर वे आशीषों की लहर ला सकते जो काफी चौड़ी और गहरी होगी। शायद वे इसका आशीषित परिणाम भी तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक प्रभु के दिन उन्हें इसका इनाम मिले। वे ना तो ये जानते और ना ही अनुभव करते हैं कि कोई महान काम कर रहे हैं। वे सफलता के बारे में सोचकर अपने आप को चिंता में डालना नहीं चाहते। उन्हें केवल चुपचाप अपना काम करते जाना, ईमानदारी से परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम को करते हैं, जिससे उनका जीवन व्यर्थ न हो। उनका खुद का आत्मा भी ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु की समानता में बढ़ता जाएगा। प्रभु के काम में जुटे हुए ये लोग इस जीवन में ही नहीं, बल्कि इससे अधिक बड़े काम के लिए और अनदेखी खुशी जो आने वाले जीवन में उन्हें मिलेगी, उसके लिए योग्य बनते जाते हैं।
बहुतों ने अपना जीवन मसीह को सौंपा है, फिर भी उन्हें कोई अवसर दिखाई नहीं देता कि कोई बड़ा काम करें या फिर कोई बड़ा बलिदान कर प्रभु की सेवा करें। ये सोचकर मन को अच्छा लगता है कि ये उस बलिदान के लिए स्वयं को समर्पण करना आवश्यक नहीं जो ईश्वर की अधिक ग्रहण योग्य होता है। ये वो प्रचारक भी नहीं हो सकता जो प्रतिदिन के काम में खतरों का, यहां तक मृत्यु का सामना भी करता है, जो स्वर्गीय लेखों में सर्वोच्च माना जाता है। एक मसीही जो अपने जीवन में ऐसा हो कि प्रतिदिन अपने स्वार्थ से दूर, अपने उद्देश्यों कामों में वफादार, शुद्ध विचार वाला, उकसाए जाने पर भी शांत रहने वाला तथा उदार, धर्मी तथा विश्वासी,
निष्ठावान, उन सभी बातों में भी जो कम महत्व की हैं का ध्यान रखने वाला। अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीही चरित्र प्रस्तुत करता है ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में उन सभी प्रचारकों व विश्व प्रसिद्ध शहीदों से कहीं अधिक कीमती होगा। चाहे कितना ज्यादा परिश्रम किया गया हो और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हों, किंतु केवल वह आत्मा जो वह काम करवाता है वही प्रभु के सामने उसे मूल्यवान बनाता है।
प्रभु की स्वीकृति इस कारण प्राप्त नहीं होती कि कोई बड़ा काम बड़े परिश्रम से किया गया और उससे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, बल्कि इससे कि कम काम करके भी साथ के प्रति वफादारी दिखाई गई हो। हम केवल बड़ी सफलता या परिणाम प्राप्त न करें, बल्कि जिस मकसद को पूरा किया जाना है उसे करें, क्योंकि प्रभु को यही भाता है। प्रभु काम की अधिकता से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि लोगों की भलाई तथा वफादारी से किया गया काम से प्रसन्न होता और इनाम देता है। छोटे छोटे अवसरों को हाथ से न जाने दो कि समय आने पर बड़ा काम करेंगे। छोटा काम ज्यादा सफलतापूर्वक किया जा सकता है, जबकि बड़े काम को पूरा करने की कोशिश में असफलता ही हाथ लगती है और तब निराशा में पड़ते हैं। जब भी जो भी प्रचार का अवसर मिले उसे थाम लो, चाहे आप गरीब हो या अमीर, छोटे हों या बड़े, प्रभु आपको अपना काम करने के लिए बुलाता है। ये तुम्हारी ताकत पर निर्भर है कि जो काम तुम्हें मिले उस काम को करने के लिए गुण व योग्यता बढ़ाकर काम करें, और कई बार दैनिक अवसरों को खोकर तुम निष्फल होकर बिखर जाते हो। यही कारण है कि प्रभु यीशु की बारी में ऐसे कई निष्फल वृक्ष हैं जो फल नहीं देते।
प्रभु चाहता है कि हमारे हर एक उपहार का हम इस्तेमाल करें, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें और अधिक उपहार प्राप्त होंगे। वह प्रभु हमें बड़ी भारी तरह से उन योग्यताओं से भर नहीं देता जिनकी हमें कमी होती है, किंतु जब हम अपनी योग्यताओं का उपयोग जैसे जैसे करते जाते हैं तब वह हमें सामर्थी बनाता और उन योग्यताओं को बढ़ाता है। प्रभु की सेवा में किया गया हर एक कार्य, हर एक बलिदान जो पूरे मन से पूरी वफादारी से किया जाता है हमारी ताकत को बढ़ाता है। यीशु का हृदय उन लोगों को देखकर प्रसन्न होता है जो हर तरह से गरीब हैं, खुश होता है उन्हें देखकर जिनका गलत तरह से इस्तेमाल होता है और जो नम्र हैं, उनसे भी प्रभु खुश होता है जो धार्मिकता पाने के लिए लालायित असंतुष्ट लोग, जो कई उन लोगों के कारण जो अयोग्य ठहरे इन्हें सच्चाई सिखाने में। वह ऐसों का स्वागत करता है जो इन लोगों की हर परिस्थितियों को देखकर निराश हों। हमें अन्य जातियों में जाने की जरूरत नहीं और ना ही अपने घर की सकरी दीवारों को छोड़कर जाना है, क्योंकि क्या जाने हमें यहीं प्रभु का वचन सुनाने का काम करना पड़े। ये काम अपने घर में, कलीसिया में, वहां जहां हम काम करते हैं, अपने साथियों के बीच में और उनके बीच में भी जिनसे हमारा व्यापार व्यवसाय होता है। यदि हम मसीह के जीवन और उसकी शिक्षाओं को अपना अध्ययन बना लेते हैं तो मसीह से जुड़ी हुई हर एक घटना उस वचन को तराश कर एक प्रभावशील संबंध स्थापित करेगा।
पृथ्वी पर जिया गया जीवन ही स्वर्ग के जीवन की शुरुआत है। पृथ्वी पर पाई गई शिक्षा एक पहला कदम है स्वर्गीय सिद्धांतों में प्रवेश करने के लिए। पृथ्वी के जीवन के कार्य एक प्रकार का प्रशिक्षण है वहां के जीवन शैली के लिए। जैसे हम यहां हैं, हमारे चरित्र और पवित्र सेवकाई में ये एक निश्चित भविष्य की प्रतिछाया है जो भविष्य में हम होंगे। वे जो प्रभु यीशु की सहभागिता से इनकार कर प्रभु की सेवा नहीं करते, वे उस मौके का इनकार करते हैं जिसमें उन्हें प्रभु की महिमा में एक साथ होने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता था। वे इस जीवन में सामर्थ्य पाने और सर्वश्रेष्ठ चरित्र पाने के प्रशिक्षण को ठुकरा देते हैं। कोई ये न सोचे कि वो एक स्वार्थपूर्ण जीवन जी सकता है और अपनी रुचि व इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हुए प्रभु के आनंद में प्रवेश कर सकता है। वे उस निस्वार्थ प्रेम के आनंद में कभी भी भागीदार नहीं हो सकते। वे इस योग्य ही न ठहरेंगे कि स्वर्गीय घर में प्रवेश पाएं। वे उस पवित्र प्रेमपूर्ण वातावरण का आनंद नहीं ले सकते जो स्वर्ग में व्याप्त है। स्वर्गदूतों का स्वर और तुरहियों का संगीत उन्हें तसल्ली नहीं देगा। उनकी समझ में स्वर्गीय ज्ञान एक पहेली होगा।
यीशु हमें बुलाता है
कि हम धैर्यपूर्वक परिश्रम करें उन हजारों लोगों के लिए जो पाप से नाश हुए जाते हैं, पूरे जगत में फैले हैं, रेगिस्तान के किनारे पर आकर टूटकर बिखरने के समान फैल गए हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक तो प्रभु की महिमा में एकजुट होते हैं। उन्हें प्रचार कार्य में भी मिलकर काम करना है, कमजोरों की मदद करना, निराश एवं कंगालों की सहायता करना। सामान्य लोगों को भी कार्यकर्ता होने चाहिए। उन दुखी लोगों के दुखों को आपस में बांटना, जैसा प्रभु यीशु ने इस जगत की मानव जाति के लिए किया। वे भी बड़े विश्वास से देखेंगे कि इस काम को करने में वे अकेले नहीं, प्रभु भी उनके साथ काम करता है। यीशु अपने प्रत्येक शिष्य में एक प्रतिरूप के रूप में बैठा हुआ है। परमेश्वर ने हरेक के आने वाले भविष्य को निश्चित किया हुआ है। उसके पुत्र की प्रतिछाया में हर एक प्राणी में ख्रीष्ट का बड़ी पुराना प्रेम, उसकी पवित्रता, नम्रता, दया और सच्चाई जगत के लोगों को दिखाई जानी चाहिए।
हरेक को प्रभु की वेदी के सम्मुख लाने के लिए सभी को आह्वान किया गया है। हमें एलीशा के समान सेवा करने को नहीं कहा गया है, ना ही हमें अपना सब कुछ बेच देने को कहा गया। परमेश्वर केवल ये चाहता है कि हम उसके काम को अपने जीवन में पहला स्थान दें। कोई भी दिन ऐसा न जाए जिसमें उसके कार्य को बढ़ावा न मिले। वो सभी से एक ही प्रकार की सेवा नहीं चाहता। कुछ विदेश में प्रचार करने के लिए तो कुछ अपने पास पाए जाने वाले साधनों से प्रचार कार्य में मदद कर सकते हैं। परमेश्वर सबके दामों को स्वीकार करता है। जिसमें जीवन को प्रभु के काम को रुचिपूर्वक करने के लिए समर्पित करना जरूरी है। जो इस प्रकार समर्पित होते हैं वे ही स्वर्गीय बुलाहट को सुनते और उसका पालन करते हैं। एक सांसारिक बुद्धिमान मनुष्य जिसका पूरा ध्यान योजना बनाने, विचार करने और व्यवसाय में हमेशा लगा रहता है, उसे सांसारिकता से हटकर अनंत काल की बातों को खोजने और उनमें बुद्धिमान बनना चाहिए। यदि वह इतनी सारी ताकत उस स्वर्गीय खजाने को ढूंढने में लगाता है और अपना जीवन प्रभु के जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, तो वह ऐसा कौन सा काम है जो पूरा नहीं कर सकेगा?
परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच नम्र व सामान्य रूप से चला फिरा करेगा कि उन पर आज के समय में सच्चाई का संदेश सुनाए, और ऐसे कई लोग यहां से वहां भेजे जाएंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा अंधकार में पड़े लोगों को सत्य की रोशनी प्रदान कर सकें। उनके जीवन में सच्चाई एक आग के समान है, को उन्हें उनकी हड्डियों में समाई हुई आग जो उन्हें चुप बैठने नहीं देती, उन्हें एक ज्वलंत इच्छा से भर देती है कि वे अंधेरे में बैठे हुए को सच्चाई की रोशनी से भर दें। कई तो इनमें अनपढ़ हैं जो प्रभु के वचन की उद्घोषणा करते हैं। बच्चे भी पवित्र आत्मा से भर कर निकल पड़ेंगे कि जाएं और सुसमाचार प्रचार करें। उन काम करने को लालायित लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा। ऐसे लोग जोश से पूर्ण हो सब प्रकार के मानवीय बंधनों, रुकावटों को तोड़ते हुए परमेश्वर की सेना में शामिल हो जाएंगे। प्रकृति छवि पर मसीही जीवन।
वह हृदय जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेता है, वो उस तालाब की तरह नहीं होता जो सूख जाता है, और ना ही उस टूटे हुए बर्तन के समान होता है जो उसमें भरे खजाने को बिखरा दे और खो दे। वो एक पर्वत की जलधारा के समान होता है जिसका स्रोत कभी न खत्म होने वाला है, जिसका पूरी तरह शुद्ध चमकता हुआ ठंडा जल एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर उछलता कूदता हुआ उन थके, बोझ से दबे प्यासे लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें तरोताजा रखता है। वो एक नदी के समान लगातार बहता हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ता है और चौड़ा और गहरा होता जाता है, जब तक कि उसका जीवन देने वाला जल पूरी पृथ्वी भर में फैल नहीं जाता। वह जलधारा जो उछलती कूदती और गाती हुई आगे बढ़ती है, अपने पीछे फलों से भरी हुई सुगंधित वादियां उपहार स्वरूप छोड़ती जाती है। इसके किनारे की घास हमेशा हरी भरी रहती, उसके पेड़ हरियाली की अधिकता से पूर्ण होते फूलों की बढ़ती होती है, और जब ग्रीष्म ऋतु में भूमि तपती धूप के कारण झुलसकर खाली और भूरी हो जाती, तब उस नदी के किनारों पर हरी भरी पेड़ों की कतार दिखाई देती है। ऐसा सिर्फ प्रभु के सच्चे और वफादार बच्चे के साथ होता है।
प्रभु यीशु का धर्म स्वयं एक शारीरिक रूप से ताकतवर बनाने वाला, सिद्धांतों को मानने वाला, जीवित क्रियाशील आत्मिक ताकत है। जब हमारे हृदय स्वर्गीय प्रेम और सच्चाई को ग्रहण करते हैं, ये सारे गुण जल की धारा की नाई फूट पड़ते हैं उस सूखे रेगिस्तान को हरा भरा व खुशहाल बनाने के लिए, जहां अब तक बंजर जमीन थी और हरियाली का नामोनिशान न था। एक मसीही के संकेत शब्द।
मसीही जीवन के तीन मूल मंत्र हैं जिनका ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए यदि हम नहीं चाहते कि शैतान हम पर हावी हो। वे मंत्र हैं, चौकस रहो, प्रार्थना में लगे रहो और काम करते रहो। हर वो आत्मा जिसने प्रभु के काम को अपना लिया है, उसने ये शपथ ली है कि उसकी धार्मिकता में बने रहने के लिए उसकी सामर्थ्य के अनुसार वो सब कुछ करे। वो सक्रिय हो, काम करने के जोश से भरा हो और अपने प्रभु की सेवा के योग्य हो। यीशु मसीह चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए। हर किसी शिष्य का ये मूल मंत्र हो कि वे प्रभु के काम के प्रति वफादार हों, आत्मिक रूप से निष्क्रिय।
अभ्यास करने से ताकत आती है। वे सभी जो परमेश्वर की दी हुई योग्यता का सही उपयोग करते हैं, उनकी योग्यताएं और बढ़ाई जाएंगी ताकि वे उसे प्रभु की सेवा में लगा सकें। वे जो प्रभु के लिए कोई काम नहीं करते, वे प्रभु की महिमा में भरने में नाकायाब होंगे और सच्चाई का ज्ञान भी नहीं बढ़ेगा। एक व्यक्ति जो सिर्फ सोता रहे और अपने अंगों को व्यायाम करने से रोके रहे, तो जल्दी ही उसके सारे अंग काम करना बंद कर देंगे, वो उनकी शक्ति खो देगा। अतः वो व्यक्ति जो ईश्वर के द्वारा दी हुई शक्ति का उपयोग नहीं करता, वो प्रभु में बढ़ने में असफल होता और अपनी शक्ति खो देता है और आत्मिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु के प्रेम और उनके संगी साथियों के प्रेम में होने के कारण उनकी मद करने के लिए लालायित होते। वे ही सुदृढ़ होते, विश्वास में जड़ पकड़ते और सच्चाई में आधार प्राप्त करते हैं। एक सच्चा मसीही परमेश्वर का काम किसी प्रभाव में आकर नहीं, किंतु सिद्धांत के कारण करते हैं। एक दिन या एक महीना नहीं, किंतु जीवन भर वो काम करते हैं। एक निश्चित उपाय।
उन टूटे पिसे हुए मन वालों के लिए एक निश्चित उपाय है, विश्वास, प्रार्थना और कार्य परमेश्वर पर भरोसा, और कार्य संतोष एवं निश्चितता लाएंगे जो प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। क्या आप कभी उत्तेजना से भरे एहसास या पूरी तरह से निराशा भरी भावना से पीड़ित रहे हैं? अंधकार से भरे दिनों में जब कुछ एहसास बहुत डरावने महसूस होते हैं, तो डरना नहीं, परमेश्वर में विश्वास रखे। उसे तुम्हारी चिंता है, उसके पास सारी ताकत है, उसका आगे प्रेम और सारी सामर्थ और सहानुभूति कभी कम नहीं होती। डरो मत कि वह अपने वायदे पूरे करने में पीछे होगा, वह अनंत सच्चाई है। वे जो उससे प्रेम रखते, उनसे जो वाचा उसने बांधी है, वह कभी फिरेगा नहीं, और वह उन पर आशीषों की बारिश करेगा। जो उसके वफादार सेवक हैं, उनकी जरूरतों को देखते हुए, वह सारी मांगे पूरी करते हुए उनको पर्याप्त आशीषें देगा। केवल एक उपाय है उन आत्मिक आलसी लोगों के लिए, और वह है काम। आत्माओं की खोज में वे जिन्हें तुम्हारी मद की जरूरत है, यह उपाय है जो प्रभु यीशु के उन मन के कमजोर लोगों के लिए बताया है जो कांपने, घबराने वाली, संदेह करने वाली आत्माएं हैं। ऐसे दुखी लोगों को संसार के दुखी लोगों के पास भेजो। उठो और उन लोगों की मद करो जिन्हें तुम्हारी मद की जरूरत है। वे मसीही जो लगातार ईमानदारी, जोश, काम करने का जज्बा और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं, वे कभी पीछे नहीं हटेंगे।
कुछ ऐसे भी हैं जो इस निस्वार्थ सेवा में लगे नहीं होते और ऐसे बुरे अनुभवों से ग्रसित होते हैं जिसके साथ संघर्ष करते हुए संदेह, बुड़बुड़ाहट, पाप करना, फिर क्षमा मांगना आदि में पड़े रहते और इतने त्रस्त हो जाते हैं कि सत्वी धार्मिकता का अर्थ समझ नहीं पाते, और ना तो संसार के होते और ना ही स्वर्गीय राज्य के। वे केवल स्वर्ग के बाहर खड़े निराश, ईर्ष्या से भरे, जलन रखने वालों की भीड़ में होते हैं, और फिर वे केवल गलतियां ढूंढना
और अपने साथियों को गलत व झूठी बातों से भरमा देते हैं। उनके पास कोई आशा, विश्वास और प्रभु की रोशनी नहीं पाई जाती जो उनके धार्मिक जीवन में होना चाहिए। अनुचित बहाने। जब प्रभु यीशु स्वर्ग को गए तब उन्होंने हर एक व्यक्ति को उसका काम सौंपा, किंतु कुछ नहीं है करने के लिए। ये तो एक अनवांटेड बहाना है। ये बहाना उन लोगों का है जो हमारे ही बीच में पाए जाते हैं और इनके मनों में ये विचार शैतान ने भर दिए और अपनी चंगुल में फंसा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रभु के लिए कोई कुछ करे। ये बहाना भाइयों के विरुद्ध एक झूठी गवाही ठहरता है और मसीह की कलीसिया में मतभेद लाता है। यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ बटोरना बटोरता नहीं वह बाहर बिखरा देता है।
भाइयों और बहनों, आप में से कई परिश्रम करने से कतराते हों, काम न करने के बहाने बनाते हों, ये कहते हों कि हम इस काम के योग्य नहीं हैं। किंतु क्या प्रभु ने आपको किसी तरह अयोग्य बनाया है? क्या ये अयोग्यता आपकी अपनी बनाई हुई नहीं है? अपनी निष्क्रियता और आलस के कारण आपने अपने आप को जानबूझकर नकारा बना लिया है। क्या परमेश्वर ने आपको एक भी तोड़ा नहीं दिया कि आप तरक्की कर सकें? न केवल अपनी सहूलियत और आनंद के लिए, किंतु प्रभु की खातिर, क्या तुम ये नहीं जानते कि ये काम आपको करना अवश्य है? उसके लहू के द्वारा खरीदे गए सेवक, जिन्हें इस पृथ्वी से आत्माओं की वसूली कर बुद्धिमानी और चतुराई से उसके खत्ते में इकट्ठा करना है, क्या तुमने अपने अभी तक के जीवन में इस शक्ति तथा दिए गए अवसरों से इनकार नहीं किया है? ये बिल्कुल सच है कि केवल कुछ ही हैं जिन्होंने प्रभु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एहसास किया और अपना कर्तव्य निभाया।
काफी लोगों का विचार है कि जो कामकाजी व्यवसाय करने वाले व्यस्त लोग हैं, वे आत्माओं के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते और ना ही हमारे उद्धारकर्ता के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। उनका कहना है कि वे आधा अधूरा काम नहीं करते, इसीलिए अपने आप को धार्मिक कर्तव्यों और क्रियाकलापों से दूर ही रखते और स्वयं संसार में खो जाते हैं। वे अपना पहला स्थान व्यवसाय को देते, प्रभु को भूल जाते और इसीलिए प्रभु उनसे नाखुश होता है। यदि वे अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए आगे बढ़ने और प्रभु के भय में रहकर संपूर्ण पवित्रता को पा सकने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें वो व्यवसाय त्याग कर ऐसा काम अपनाना चाहिए जहां प्रभु यीशु सदा उनके साथ रहें, वे उसकी संगति को हर समय पा सकें, उस भारी भरकम ताज को पाने का उद्देश्य।
हमें परिश्रम से थकना नहीं है और ना ही निराश होना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा जब हम आशीष भरे महिमामय जीवन को थोड़े से आराम, सहूलियत, मनोरंजन जैसे सांसारिक रुचियों के पीछे दांव पर लगा दें। इन सभी पर जीत पाने वाले के लिए प्रभु के हाथों से मिलने वाला एक उपहार प्रतीक्षा करता है। हम में से कोई उसके योग्य नहीं, ये तो प्रभु की ओर से उपहार है। ये उपहार क्या ही अद्भुत और महिमा से पूर्ण होगा। पर हम ये याद रखें कि एक तारा दूसरे तारे की तुलना में अलग होता है, पर हमसे जैसे विनती की गई है कि हम उसे पाने के लिए लालायित हों। प्रभु की ताकत में होकर हम तारों से भरे हुए भारी भरकम ताज को लक्ष्य बनाएं। वे जो बुद्धिमान हैं वे आकाश के समान चमकदार होंगे, और वे जो बहुत सी आत्माओं को प्रभु की धार्मिकता में जीत कर लाएंगे वे तारों के समान हमेशा हमेशा के लिए चमकेंगे। सेवा जिसके लिए कीमत चुकाई। प्रभु अपने आगमन पर हर तोड़े को परखेगा और अपने दिए गए तोड़े से ब्याज की मांग करेगा, क्योंकि उसकी ताड़ना और तिरस्कार के द्वारा, जीवन भर परिश्रम और क्रूस की मृत्यु के द्वारा मसीह ने बहुत बड़ी कीमत इस सेवा के लिए चुकाई है। उन सभी के लिए जिन्होंने उसके नाम को ग्रहण किया और दर्शाते हैं कि वे उसके चुने हुए सेवक हैं।
सभी उन गहरी नैतिक वाचा के अधीन अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने के काम में निरंतर सुधार लाते रहें। तुम अपने अधीन नहीं है, प्रभु कहता है, क्योंकि तुम मोल देकर खरीदे गए हो। इसलिए प्रभु की सेवा करते हुए उसकी महिमा करो, जो स्त्री व पुरुषों को पाप से छुड़ाकर प्रभु की धार्मिकता में लाओ।
हम प्रभु के जीवन के मोल से खरीदे गए हैं। इसलिए खरीदे गए हैं कि हम उसे उसके वफादार सेवक जो उसके हैं लौटा सकें। परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है कि मैं उसके लोगों को जगाऊं, उनके रहने के स्थानों को बड़ा करूं और उनकी सीमा को बढ़ाऊं। मेरे भाइयों और बहनों, तुम दाम देकर खरीदे गए हो, अतः जो कुछ तुम हो और जो कुछ तुम्हारा है उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करो, दूसरों की भलाई करो। प्रभु यीशु पूरे जगत को पाप से नाश होने से बचाने के लिए क्रूस पर मर गया और वो इस काम में तुम्हारी सहायता चाहता है। तुम्हें उनके सहायक बनना है। पूरी वफादारी और लगातार बिना रुके परिश्रम करते हुए तुम्हें उन खोए हुओं को ढूंढना है, बचाना है। साथ में ये भी याद रखो कि ये तुम्हारे पाप थे जिनके कारण यीशु को क्रूस की मृत्यु मिली। प्रभु यीशु के चेले सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हमारा प्रभु हमें सिखाता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रचार कार्य है। प्रभु यीशु स्वयं सेवक था, अतः अपने चेलों को भी वह सेवा करने को कहता था। प्रभु की सेवा और उनके संगी साथियों की भी सेवा। सेवा का कानून एक जोड़ने वाली कड़ी बन जाता है जो हमें परमेश्वर और हमारे संगी साथियों से जोड़ता है। आगे बढ़ूं।
कभी कभी मसीही जीवन में खतरे आते हैं और अपना काम करना कठिन हो जाता है। सोचकर देखें तो आगे विनाश नजर आता है और पीछे देखें तो पाप की कैद और उसकी मजदूरी मृत्यु दिखाई देती हैं। फिर भी परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई देती है, आगे बढ़ो। आओ हम उस आदेश का पालन करें जबकि हमारी देखने की शक्ति इतनी नहीं कि अंधेरे को भेद सकें। हमारी उन्नति के मार्ग में आने वाली रुकावटें, बाधाएं कभी खत्म नहीं होंगी यदि काम करने वालों का जोश कम हो या वे खतरों के डर से ठहर जाएं या अपने आप पर संदेह करने लगें। वे जो आज्ञा को टाल देते जब तक कि प्रत्येक अनिश्चितता गायब हो जाती और हार या असफल होने का कोई डर नहीं होता, तब तक वे आज्ञा नहीं मानते। विश्वास परेशानियों को नहीं देखता किंतु अनदेखी वस्तुओं पर भरोसा रखता है, यहां तक कि सर्वशक्तिमान पर भी। अतः वो तो कभी घबरा ही नहीं सकता। प्रभु यीशु के हाथ को थामे रखना ही भरोसा है, चाहे कोई भी आपातकालीन परिस्थिति क्यों न हो।
हमारे विचार अधिकतर बहुत संकीर्ण होते हैं। परमेश्वर बुलाता है कि उसकी रोशनी को जगत में फैलाने का काम लगातार आगे बढ़ाना है। हमें उसके लिए अधिक उपयोगी और सही तरीकों का अध्ययन करना व साधनों का प्रयोग कर लोगों तक पहुंचना है। हम अपने कानों से अपने कप्तान का, जो सेना का सेनापति है, आदेश सुनना चाहते हैं, आगे बढ़ो। हमें काम करना है और प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं। वो अपना काम अवश्य करेगा जब हम भी अपना कर्तव्य निभाएंगे। भाइयों और बहनों, जो काफी समय से परमेश्वर में भरोसा रखते हों, तुमने अभी तक वो काम नहीं किया जो प्रभु आपसे चाहता था। आत्माओं को बचाने का आपका वो प्रेम कहां गया? ये प्रभु का आनंद है, आत्माओं को बचाना। यही काम और यही आनंद व खुशी आपकी भी हो। अपने कर्तव्य पूरे करो और प्रभु के लिए जो भी बलिदान कर सकते हों वो करो, और वो तुम्हारी लगातार मदद करेगा जब भी आपका कर्तव्य आपको बुलाता है। आगे बढ़ जाऊं, काटे भी रुकावट तुम्हारा रास्ता न रोकें। अपने प्रभु की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करो, और यदि अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबकर अपने भाई को देखकर ये मत पूछो कि मेरा भाई क्यों काम नहीं करता, उसके ऊपर काम का बोझ क्यों नहीं है। अपना काम अपने आसपास के लोगों में करो, काम अच्छे से करो, केवल प्रशंसा पाने के लिए नहीं किंतु अपने प्रभु के लिए, क्योंकि तुम उसके अधीन हो।
परमेश्वर के लोगों का काम आगे और आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा जीत की ओर। इस्राएल की सेना का अगुआ यहोवू से भी बढ़कर है, वो हमारे बीच में है, हमें उद्धार दिलाने वाला हमारा कप्तान, जिसने हमें उत्साहित करने के लिए कहा है, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो हमारी अगुवाई एक निश्चित जीत पाने तक करेगा जो परमेश्वर ने वायदा किया है।
उसके पूरा करने के लिए वो हर समय योग्य है, और जो काम वो अपने लोगों को देता है उसे करने के लिए भी वही योग्य बनाता है। हम प्रभु यीशु की आत्मा से भरपूर क्यों नहीं हो जाते? अभी तक हम इस दुखी संसार को चिल्लाहट से दुखी क्यों नहीं हुए? क्या हमें इस बात का आभास है कि हमें यीशु के ताज में तारा लगाने का प्रतिष्ठित काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है? एक आत्मा जो शैतान के चंगुल से छूटकर प्रभु के राज्य में हमेशा का जीवन पा सकता है। हमारी कलीसिया को इस बात को जानना चाहिए कि हर एक आत्मा को प्रभु का वचन और संदेश सुनाया जाना अवश्य है। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप जकरिया का तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ें, यदि आप इन्हें समझते हैं, यदि आप उस संदेश को प्राप्त करते हैं, तो उन लोगों को जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु की धार्मिकता के प्यासे हैं, उनके लिए ये काम हो जाएगा कि वे भी आएं, आगे बढ़ें और विजयी हों।
इस पृथ्वी के अनेक लोगों ने अपनी सारी भत्ती शैतान को सौंप दी है, लेकिन हमें धोखा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि शैतान लोगों पर हावी है, किंतु प्रभु यीशु ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की जिम्मेदारी ले ली है। परमेश्वर का वचन दिखाता है कि बुराई, भ्रष्टाचार और दुष्टता संसार के अंतिम दिनों में चरम सीमा पर होगी। जैसा हम देखते हैं, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। हमारा विश्वास आखिरकार प्रभु यीशु के राज्य की स्थिरता और अंतिम विजय को दर्शाता है। अतः हमें आगे बढ़कर अपने कर्तव्य को पूरा करना है। एक प्रभावशाली दृश्य। रात के एक दर्शन में एक बहुत प्रभावशाली दृश्य मेरे सामने से गुजरा। मैंने देखा एक बहुत बड़ा आग का गोला बहुत से सुंदर रहने के स्थानों पर गिरा और उन्हें तुरंत नाश कर दिया। मैंने किसी को ये कहते हुए सुना, हम जानते थे कि पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि यह इतनी जल्दी होगा। दूसरे ने बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हें पता था? तब तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हमें तो पता नहीं था। और सब ओर से यही उलाहना भरे शब्द सुनाई पड़े। बड़ी निराशा से मैं जाग गई। थोड़ी देर में मैं फिर से सो गई और अपने आप को एक बड़ी भीड़ के साथ पाया। कोई बड़े अधिकार से सबको संबोधित कर रहा था, जिसके सामने जगत का नक्शा खुला पड़ा था। उसने कहा कि वह नक्शा परमेश्वर की दाख की बारी है, जिसे फसल के लिए तैयार करना है। जैसा कि स्वयं से एक ज्योति सब पर चमकी, वही ज्योति दूसरों पर भी चमकनी थी। अनेक स्थानों पर यह ज्योति चमकानी थी और इसी ज्योति से अन्य ज्योतियां जलाई जानी थीं।
वे शब्द फिर से दोहराए गए, तुम पृथ्वी के नमक हो, किंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मैंने ज्योति के पुंज शहरों और गांवों से चमकते हुए देखे, ऊंचे स्थानों से और पृथ्वी के निचले हिस्सों से भी। परमेश्वर के वचन का पालन किया गया था। इसका परिणाम था कि उसकी याद में हर गांव व शहर ज्योतिर्मान था। उसकी सच्चाई की घोषणा पूरे जगत में की गई थी।